देखिए भाई आगे सबक, वह इन कानन नुशूज उमिन कीबलिही युकरह लहू अय्या खुद अमीन हाई वजन लि कौलिही तआला व इन अरद तो मुस्तिबदाल जौजिन मकान जौजिन इला अन काल फला तखुदू मिन हु शैआ वली अन्नहु औहशहा बिल इस्तिबदाली फला यजीदु फी वहशतिहा बि अखदिल माल। गुज़श्ता सबक में हमने ईला के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बतलाया था कि ईला जो है अरबी जुबान में इसका माना है कसम खाना, आला यूली ईला अनफहुआ मूलिन। और शरीयत के अंदर ईला जो है वो बीवी से सोहबत न करने की कसम खाना चार माह के लिए या इससे ज्यादा के लिए, इसको ईला कहते हैं। ईला जो है जमाने जाहिलियत में तो फौरी तलाक शुमार होती थी, लेकिन शरीयत ने इसके हुक्म को मुअख्खर कर दिया। यह अब भी तलाक ही है लेकिन इसके हुक्म को मुअख्खर कर दिया और शरीयत ने उसकी मुद्दत बयान कर दी जो कि चार माह है। भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से ईला कर लेते हैं, तरब्बुसु अरबाती अशहुरिन, उनके लिए चार माह की मोहलत है। फइन फाऊ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। तो इंदल अहनाफ, चार माह जब गुजरेंगे और इसके अंदर अगर खावंद ने रुजू नहीं किया तो खुद ब खुद बीवी तलाके बाइना के साथ जुदा हो जाएगी, और अगर खावंद ने बीच में रुजू कर लिया यानी सोहबत कर ली तो फिर उसको कसम का कफारा देना पड़ेगा। और साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि यहां सिर्फ कसम खाना जरूरी नहीं बल्कि तालीक भी की जा सकती है। मसलन खावंद बीवी से कहता है कि अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मुझ पर हज लाजिम है, तो ये भी ईला ही है क्योंकि यहां ये जजा मान्या बनेगी। इसने क्या जजा जिक्र की है कि अगर मैं सोहबत करूं तो मुझ पर हज लाजिम है, तो इस जजा के वाके होने के खौफ से वो सोहबत नहीं करेगा। ये कहता है अगर मैंने तुमसे सोहबत की तो मुझ पर रोजे लाजिम है, कोई मिकदार जिक्र कर दी इतने रोजे, चाहे थोड़ी मिकदार हो या ज्यादा, या इसी तरह सदका जिक्र कर दिया कि अगर मैंने तुझसे सोहबत की तो मुझ पर इतना सदका लाजिम है। तो ये जो तालीक है आप पढ़ चुके हैं कि इसको भी फिका के अंदर यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह यमीन किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए होती है। और नीज जैसे कसम खाने के बाद लाजिम हो जाती है, अब उससे रुजू नहीं हो सकता, इसी तरह तालीक भी लाजिम हो जाती है इंसान पर और उससे रुजू नहीं हो सकता। तो उलमा फरमाते हैं कि ईला करने वाले शख्स पर दो नापसंदीदा चीजों में से एक बात जरूर आएगी। तो अगर तो वो सोहबत नहीं करता तो चार महीने बाद बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर वो सोहबत करता है तो उसको वो कसम का कफारा देना पड़ेगा या वो जो जजा उसने जिक्र की थी वो उस पर लाजिम हो जाएगी। भाई तो हमारे नजदीक चार माह गुजरते ही खुद बखुद तलाके बाइन हो जाएगी, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, चार माह के गुजरने के बाद भी तलाक वाके नहीं होगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा खावंद रुजू करता है या तलाक देता है। अगर खावंद न रुजू करता है न तलाक देता है फिर काजी के पास जाना पड़ेगा, और फिर काजी जो है खावंद का नाइब होकर तसरीह बिल एहसान पर अमल कर देगा, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अत्तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, कि रजई तलाकें दो हैं, उसके बाद खावन या तो बीवी को अच्छे तरीके से रोक ले या उसको अच्छे तरीके के साथ एहसान के साथ रुखसत कर दे। भाई तो ये शख्स जब उसको अच्छे तरीके से नहीं रोक रहा तो दूसरी सूरत यही है कि तसरीह बिल एहसान पर अमल किया जाए, तो काजी इसका नायब होकर तसरीह बिल एहसान पर अमल कर देगा। भाई और ये जो हमारा मजहब है कि मुद्दत गुजरते ही तलाक बाइन वाके हो जाएगी, ये साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि ये हजरत उस्मान गनी, हजरत अली और अबादिला सलासा यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला हो, उनसे भी यही मरवी है और इसी तरह हजरत जैद इब्ने साबित से भी यही मरवी है। तो हमने भी इन्हीं की पैरवी की है कि चार माह के गुजरने पर खुद ब खुद तलाक बाइन वाके हो जाएगी। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर एक शख्स ने चार माह की कसम उठाई है और चार माह इसने सोहबत नहीं की तो बीवी तलाक बाइन से जुदा हो जाएगी और कसम भी खुल जाएगी क्योंकि मुद्दत गुजर गई, उसने भी चार माह की कसम उठाई थी। लेकिन अगर एक शख्स मुअब्बद कसम उठा लेता है और मसलन कसम के साथ मुद्दत जिक्र नहीं करता, और मैंने आपको बतलाया था कि कसम के साथ मुद्दत जिक्र न की जाए तो उसको मुअब्बद शुमार करते हैं। एक शख्स कहता है वल्लाह मैं जैद के घर नहीं जाऊंगा, देखो मुद्दत नहीं जिक्र की तो इसको मुअब्बद शुमार करेंगे, 10 साल बाद भी ये जाएगा तो इसको कफारा देना पड़ेगा भाई। तो एक शख्स ने मुअब्बद कसम खा ली बीवी से सोहबत न करने की, चार माह गुजर गए और चार माह के बाद बीवी को तलाक बाइन हो जाएगी, बीवी जुदा हो गई, लेकिन ईला भी अभी नहीं खत्म हुआ क्योंकि वो मुअब्बद कसम है भाई। और नीज ये मिल्कियत भी अभी मौजूद है, पहली मिल्कियत में खावन कितनी तलाकों का मालिक था, 3 तलाकों का मालिक था और अभी सिर्फ 1 वाकई हुई है, तो ईला मौजूद है भाई। ये बीवी अभी भी खावन के लिए हलाल है। क्या माना हलाल है? मतलब यह है खावंद इससे बगैर हलाले के निकाह कर सकता है, दरमियान में किसी खावंद सानी के आने की जरूरत नहीं, तो लिहाजा ये उसे निकाह कर सकता है। चुनांचे तलाक हो गई और कसम अभी तक बाकी है, ईला अभी भी बाकी है, इस खावंद ने दोबारा इसी औरत से निकाह कर लिया तो फिर ईला आ गया भाई, और अब फिर 4 महीने तक अगर खावन ने सोहबत ना की तो दूसरी तलाक भी वाके हो जाएगी और निकाह करते ही इसकी मुद्दत शुरू हो जाएगी भाई। तो लिहाजा ये यमीन अभी तक मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरी तलाक हो गई, फिर बाद में खावन ने तीसरी दफा इस औरत से निकाह कर लिया तो अब भी ईला मौजूद है, अब भी खावन ने सोहबत ना की 4 महीने तक, तो फिर बीवी जुदा हो जाएगी तलाक बाइन के साथ और अब मिल्कियत पूरे तौर पर खत्म हो गई। अब तो औरत ये खावन के लिए हलाल ही नहीं है, तो अब ईला खत्म हो गया। ईला क्या हुआ? खत्म। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि जब तलाक को मुअल्लक किया जाए तो वो उसी मिल्कियत के साथ तालीक का ताल्लुक होता है जिस मिल्कियत में कसम खाई है, जिस मिल्कियत में तालीक की है भाई। और अगर दरमियान में खावंदे सानी आएगा तो खावंदे सानी के बाद तो नई मिल्कियत आती है, तवज्जो है, लिहाजा वहां फिर ये ईला नहीं होगा। लिहाजा इस अब 3 तलाकें हो गई लेकिन अभी भी कसम नहीं खुली, कसम उसी तरह मौजूद है। इसने क्या कसम खाई थी? वल्लाह मैं तुमसे सोहबत नहीं करूंगा। तो ईला तो खत्म हुआ क्योंकि पहले मिल्कियत खत्म हो गई लेकिन कसम मौजूद है। फिर ये इस औरत ने किसी और शख्स से निकाह किया और उसने कुछ मुद्दत के बाद तलाक दे दी या उसका इंतकाल हुआ, अब फिर पहला खावन इसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है और अब निकाह करेगा तो ईला मौजूद नहीं। अब 4 महीने बगैर सोहबत के गुजरेंगे तो तलाक वाकई नहीं होगी। हां अलबत्ता यमीन मौजूद है, कसम तो इसने हमेशा की खाई थी, तो अगर ये सोहबत करेगा तो हानिस होगा, इसको कफारा देना पड़ेगा भाई। और फिर ये भी आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि कम से कम 4 माह की कसम खाना जरूरी है ईला के अंदर। ईला के अंदर कम से कम 4 माह की कसम खाना, 4 माह की तालीक जरूरी है। वजह यह कि ईला के अंदर हमेशा कोई ना कोई मान्य होना चाहिए सोहबत से। बात समझ में आ रही है? माने होने का क्या माना? यानी अगर खावन सोहबत करेगा तो उस पर कफारा लाजिम आ जाएगा, तो ये कफारा मानेअ बनेगा, ये उसको कसम तोड़ने से रोकेगा भाई। या वो जो इसने तालीक की है, जजा को मुअल्लक किया है, तो वो जजा के खौफ से खावन ये बीवी से सोहबत नहीं करेगा। मसलन खावन ने कहा था कि अगर मैंने तेरे साथ सोहबत की तो मुझ पर हज लाजिम है, तो अब इस जजा के खौफ से खावन जो है वो सोहबत नहीं करेगा। तो ईला के अंदर याद रखना ये सारी मुद्दत के दौरान मानेअ का पाया जाना जरूरी है। अगर सारी मुद्दत के अंदर मानेअ न हुआ कुछ मुद्दत के अंदर मानिया है और कुछ मुद्दत में मानिया नहीं, तो फिर ये ईला नहीं है भाई। हत्ता कि अगर एक शख्स ये कसम खा लेता है कि मैं एक दिन कम चार महीने तक बीवी से सोहबत नहीं करूंगा, तो ये भी ईला नहीं है, क्योंकि एक दिन कम है, एक दिन जो आएगा उसमें तो कोई मानिया नहीं है, जबकि ईला के अंदर मानिया का पाया जाना जरूरी है। और फिर इसी तरह साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि ईला के अंदर इकट्ठे चार महीने जिक्र करना भी जरूरी नहीं है, बस चार महीने मुसलसल मानिया बन रहे हों, मानिया के साथ पाए जाएं, तो फिर ईला पाया जाएगा। लिहाजा एक शख्स बीवी से कहता है कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा दो महीने और दो महीने, तो ये कुल कितने हो गए, चार महीने, लिहाजा ईला हो गया। या खावन यूं कहता है कि मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा एक महीना और एक महीना और एक महीना और एक महीना, ये भी कितने हो गए, चार महीने, तो ये ईला हो गया। जबकि इसके मुकाबले में अगर खावन ने बीवी से कहा वल्लाह मैं तेरे साथ सोहबत नहीं करूंगा दो महीने तक, फिर उसके बाद एक दिन गुजर गया, अगले दिन फिर कहता है कि वल्लाह मैं तेरे साथ सोहबत नहीं करूंगा उन दो महीनों के बाद मजीद दो महीने, तो अब फुकहा फरमाते ईला नहीं, क्योंकि ईला के अंदर चार मुसलसल महीनों का होना जरूरी है। और यहां जब उसने पहले दिन कसम खाई तो दो महीने आ गए, लेकिन अब एक दिन गुजर गया तो दो महीनों से एक दिन कम हो गया, अब मजीद दो महीने साथ आ गए तो देखो चार महीनों से एक दिन कम है, लिहाजा यहां ईला नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर एक खावन बीवी से कहता है कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा पूरा एक साल सिवाय एक दिन के, यानी एक दिन का इस्तिस्ना कर लिया खावन ने, एक दिन का इस्तिस्ना कर लिया, तो फिर इस सूरत के अंदर हमारे नजदीक ये ईला करने वाला नहीं है, ये ईला नहीं है भाई। क्यों ईला क्यों नहीं है, उसने पूरे साल की कसम खाई है, तो जवाब ये कि ईला उसे कहते हैं कि जब भी खावन सोहबत करे उस मुद्दत के दौरान तो वो हानिस हो, लेकिन यहां उसने एक दिन का इस्तेसना किया हुआ है, वो जिस दिन भी सोहबत करेगा हानिस तो नहीं होगा, लिहाजा ये ईला नहीं है। हां अगर इस साल के दौरान इस शख्स ने किसी वक्त सोहबत कर ली किसी दिन तो वो इस्तेसना वाला दिन गुजर गया, उस दिन तो इस पर कफारा नहीं, लेकिन उसके बाद मुद्दत देखेंगे, अब अगर चार महीने या इससे ज्यादा बाकी हैं अब तो इसके पास सोहबत की गुंजाइश नहीं है, तो अब ईला बन जाएगा, अब ईला बन जाएगा। और इसके अंदर अगर ये सोहबत करेगा तो कफारा देना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो बीवी हाथ से निकल जाएगी भाई। और साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि मुतल्लक़ रजईया से भी ईला किया जा सकता है, लेकिन मुतल्लक़ बाइना से ईला नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि मुतल्लक़ रजईया के साथ तो निकाह पूरे तौर पर मौजूद है, हत्ता के खावन के लिए उसे सोहबत भी जायज है। हां जब सोहबत करेगा तो रुजू हो जाएगा, तो खावन के लिए सोहबत भी जायज है, लिहाजा उससे ईला किया जा सकता है। और ईला का महल भी हमारी बीवियां हैं भाई, क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, लिल्लदीन युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो ईला कर लेते हैं मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, मालूम हुआ ईला किससे होगा, अपनी बीवी से होगा। और मुतल्लक़ रजईया अभी भी बीवी है, जबकि मुतल्लक़ बाइना वो तो उससे तो निकाह टूट चुका है, वो तो अब उस खावन की बीवी नहीं है, लिहाजा उससे ईला नहीं हो सकता भाई। और साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स किसी अजनबिया से कहता है वल्लाहि ला अक्रबुकी, कि वल्लाह मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, या अजनबिया से कहता है अंति अलैया का जहरी उम्मी, जिहार वाला लफ्ज कह देता है, तो यह कलाम बातिल है, इसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि ये ईला कर रहा है और ईला तो अपनी बीवी से होता है, या ये जिहार कर रहा है, जिहार तो अपनी बीवी से होता है, लिहाजा इसका कलाम बातिल हुआ। बाद में इस शख्स ने इसी औरत से निकाह कर लिया तो क्या अब वो ईला बन जाएगा, क्या अब वो जिहार बन जाएगा, कहते हैं नहीं, वो कलाम एक दफा बातिल हो चुका, अब दोबारा उसको सही करार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा ईला भी नहीं और जिहार भी नहीं। हां अलबत्ता इसने कसम अगर खाई थी वल्लाही ला अक्रबू की, तो फिर इस सूरत में अगर यह सोहबत करेगा तो वह कसम का कफारा देना पड़ेगा, और अगर जिहार वाला जुमला कहा था फिर तो कोई कफारा वगैरह भी इस पर नहीं है, वह कलाम बातिल हो गया था। और जबकि बांदी की मुद्दत ईला जो है वो दो महीने है, क्योंकि गुलामी की वजह से अहकाम में तंसीफ हो जाती है, अहकाम आधे हो जाते हैं भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर तावन या बीवी में से कोई मरीज है, इतना बीमार है कि उसमें सोहबत नहीं हो सकती, या बीवी जो है सगीरा है, इतनी सगीरा है कि उस जैसी से सोहबत नहीं हो सकती, या बीवी जो है रतका है, रतका मैंने बतलाया कि रतका इसे कहते हैं कि मसलन औरत का सोहबत का मकाम ही बंद है, पेशाब वगैरह की जगह तो है लेकिन सोहबत का मकाम ही नहीं, तो अगर औरत रतका है और इस जैसी औरत से खावन ने ईला कर लिया, बीवी रतका है या सगीरा है या दोनों में से कोई बीमार है या दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि चार माह में पहुंच भी नहीं सकते और खावन ने ईला कर लिया, अब क्या करें भाई। ईला से रुजो तो सोहबत के जरिए होता है और यहां तो सोहबत की भी कोई सूरत ही नहीं है, तो उसका जवाब दिया कि भाई यहां जुबान से रुजो कर ले कि फितु ईला मरअती, मैंने रुजो कर लिया अपनी बीवी की तरफ, तो इस सूरत में रुजो हो जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं और इसी तरह अहनाफ में से इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जुबान से फै नहीं होगा, इसलिए क्योंकि फै के साथ हानिस होना लाजिम होता है, जब भी ईला के अंदर रुजो किया जाएगा हानिस होना जरूर होगा, या वहां वो कसम टूटेगी कफारा देना पड़ेगा या वो जजा आ जाएगी, लेकिन यहां पर जुबान से जब रुजो करेगा तो सिर्फ फै पाया गया और हानिस होना तो नहीं है, जबकि फै तो हानिस होने से जुदा नहीं हो सकता। जबकि हमारे नजदीक यहां जब खावन सोहबत पर कादिर ही नहीं है और फिर वो कसम खा रहा है कि वल्लाह मैं तेरे साथ सोहबत नहीं करूंगा, तो मालूम हुआ वो यहां औरत के हक जिमा को नहीं रोक रहा, क्योंकि जिमा पर तो वो कादिर ही नहीं है, वो सिर्फ जुबान से बीवी को तकलीफ दे रहा है, तो जब सिर्फ जुबान के जरिए तकलीफ दी है तो जुबान के जरिए रुजो भी काफी हो जाएगा भाई, लिहाजा यहां पर फिर जुबान से रुजो काफी हो जाएगा। अल्बत्ता एक शर्त है कि इस पूरे मुद्दत ईला के अंदर खावन सोहबत से आजिज ही रहे, अगर सोहबत पर कादिर हो गया तो फिर जुबान से फै काफी नहीं होगा बल्कि फिर जिमा ही करना पड़ेगा। और फिर आखिर में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति अलैया हराम, तू मुझ पर हराम है। मैंने बताया था यहां दो जुमले हैं, एक सिर्फ यूं कहे अंति हराम और एक है अंति अलैया हराम, तू मुझ पर हराम है, दोनों में फर्क है भाई। अगर सिर्फ कहे अंति हराम तू हराम है तो यह किनाया है तलाक से, या पीछे पड़ चुके हैं किनायात के अंदर, क्योंकि इसमें तलाक वाला भी माना है और गैर तलाक वाला भी माना है, क्योंकि अंति हराम उनका यह माना भी हो सकता है तू मुझ पर हराम है क्योंकि मैंने तुझे तलाक दे दी है, और इसका यह माना भी हो सकता है तू और मर्दों पर हराम है क्योंकि तू मेरी मनकूहा है भाई। तो यहां दोनों माना है, तलाक वाला भी और गैर तलाक वाला भी, लेकिन यहां जो जुमला जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया वो है अंति अलैया हराम तू मुझ पर हराम है, तो इसमें फिर खावन से उसकी नीयत पूछी जाएगी कि आपकी क्या नीयत थी। तो अगर खावन कहता है कि मैंने तो वैसे ही झूठ मूठ एक बात कही थी तो कहते हैं उसकी तस्दीक की जाएगी, इसलिए क्योंकि उसने वाकई झूठ ही बोला है, हकीकत में तो बीवी उस पर हलाल है भाई और वो क्या कह रहा है तू मुझ पर हराम है, तो ये झूठ ही बोल रहा है। और अगर कहा, अगर उसने कहा मैंने तलाक का इरादा किया था तो फिर एक तलाक बाइन हो जाएगी, क्योंकि ये किनाया है और किनाये से कौन सी तलाक होती है, तलाक बाइन। और अगर उसने तीन की नीयत की तो तीन भी वाकई हो जाएंगी, क्योंकि किनायात के अंदर तीन की नीयत भी सही है भाई, सिर्फ तीन किनायात हैं जिनसे तलाक रजई होती है और बाकी के अंदर तलाक बाइन। वो तीन किनायात कौन से हैं, इअतदी और इस्तबरी रहिमा की और अंति वाहिदा, इनके अंदर सिर्फ तलाक रजई होती है, बाकी जितने मशहूर किनायात हैं सबसे तलाक बाइन होती है, और किनाय के अंदर अगर तीन की नीयत भी खावंद कर ले तो तीन तलाकें भी वाकई हो जाती हैं। और अगर खावंद से पूछा गया कि आपका क्या इरादा था अंति अलैया हराम उनसे, और वो कहते हैं मेरा इरादा जिहार का था, तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिहार हो जाएगा, जबकि इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जिहार नहीं होगा, क्योंकि जिहार के अंदर तशबीह रुकन है, किसी महरम के साथ क्या करे तशबीह दे, अंति अलैया का जाहरी उम्मी, तो मां, बहन, बेटी, खाला, फूफी, किसी भी महरम के साथ तशबीह देगा तो जिहार होगा। और तशबीह तो यहां है नहीं, यहां तो उसने सिर्फ क्या कहा है, अंति अलैया हरामुन। जब तशबीह नहीं है तो जिहार भी नहीं हो सकता। जबकि शेखैन फरमाते हैं नहीं, जिहार के अंदर भी एक किस्म की हुरमत आ जाती है और यह शख्स भी हुरमत को जिक्र कर रहा है। और मुतलक जो होता है वह मुकैद का एहतमाल रखता है भाई। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि एक शख्स क्या कहता है, वल्लाहि ला आकुलु तआमन, वल्लाह मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब तआम ये तो नकेरा है भाई, तो कोई भी खाना ये खाएगा ये हानिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है कि भाई मैंने तो फला खाने की नीयत की थी, तो फुकाहा फरमाते हैं इसकी नीयत सही है, क्योंकि इसने लफ्ज जिक्र किया है मुतलक खाने का और नीयत की है खास खाने की। तो मुतलक जो होता है उसके जिमन में मुकैद की नीयत सही है, क्योंकि वो मुकैद का एहतमाल रखता है, वो मुकैद का, क्योंकि वो खास खाना भी तो ताम है ना, वो भी ताम है। तो लफ्ज जिस चीज का एहतमाल रखता हो उसकी नीयत सही है, लेकिन अगर लफ्ज एक चीज के एहतमाल ही नहीं रखता उसकी नीयत सही नहीं है। मसलन आप लफ्ज जिक्र करते हैं बकरी और इरादा करते हैं आप हाथी का, नहीं भाई बकरी के अंदर हाथी के माना का एहतमाल ही नहीं है, तो आपकी यह नीयत लग्व है, इसका कोई एतबार नहीं। जब एक लफ्ज में एक माना का एहतमाल हो फिर आप उसकी नीयत कर सकते हैं, वरना आप उसकी नीयत नहीं कर सकते भाई जी। और अगर उस शख्स से पूछा गया आपकी क्या नीयत थी, उसने कहा मेरा इरादा हराम करने का था, यानी इस बीवी की सोहबत वगैरह को मैं अपने ऊपर हराम करना चाहता था, तो ये ईला है, तो ये ईला है। और अगर वो कहता है मेरी कोई नीयत नहीं थी, तो भी ये ईला ही शुमार होगा, क्योंकि हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करना ये इंदल अहनाफ यमीन है। हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर लेना यह इंदल अहनाफ यमीन शुमार होती है। तो यहां पर भी बीवी तो उसके लिए हलाल थी, वो उसको अपने ऊपर हराम कर रहा है, तो ये यमीन हो गई, और यमीन जब हुई तो ये ईला हो गया भाई, ये ईला हो गया। और फिर साहिब हिदाया ने आखिर में बतलाया था कि बास फुकाहा जो हैं इस लफ्ज तहरीन जो है इसको तलाक की तरफ फेरते हैं, कि जब बगैर नीयत के कोई शख्स अपनी बीवी से कहे अंति अलैया हरामुन, तो ये तलाक शुमार होती है, ये तलाक शुमार होती है। और ये उर्फ इस तरह है, यानी आम लोगों की आदत इस तरह है, वो इसको तलाक शुमार करते हैं। और मैंने आपको बतलाया था कि ये बर्रे सगीर जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान वगैरह यहां पर भी यही उर्फ है, खावंद अगर बीवी से कह दे तो मुझ पर हराम है, तो इसको तलाक शुमार करते हैं। लिहाजा यहां साहिब हिदाया ने तो जिक्र फरमाया उससे उसकी नीयत पूछी जाएगी, उससे उसकी नीयत पूछी जाएगी, लेकिन हमारा उर्फ यह है कि खावन बीवी से अगर अंति अलैया हराम उन कह दे या कह दे तू मुझ पर हराम है, तो यह सरीह के दर्जे में है, किसके ये सरीह, और सरीह लफ्ज के अंदर नीयत की जरूरत नहीं होती। खावन बीवी से कह दे अंति तालिकुन, तो ये सरीह है, इसमें नीयत पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें और कोई माना है ही नहीं तलाक के अलावा, तो वहां तलाक वाक हो जाती है। इसी तरह हमारे उर्फ में अंत अलैया हराम या तू मुझ पर हराम है, ये सरीह हो चुका है तलाक के अंदर, इसको सरीह की तरह समझा जाता है, लिहाजा यहां नीयत पूछने की भी जरूरत नहीं, फौरन हुक्म लगाया जाएगा कि तलाक बाइन हो गई, तलाक बाइन हो गई। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने किताबुल खुला शुरू की थी। मैंने बतलाया था खुला इसे कहते हैं कि बीवी कुछ माल देकर अपने आप को खावन से छुड़ा ले, खावन से छुड़ा ले। और कुरान और हदीस में खुला का जिक्र है, मालूम हुआ यह जायज है भाई। और खुला तलाके बाइन के हुक्म में है, और तलाके बाइन के बाद औरत इद्दत गुजारती है, तो यहां भी इद्दत गुजारेगी, और इद्दत के अंदर खावन मजीद तलाकें भी दे सकता है, तो यहां भी खावन मजीद तलाकें देगा, वो भी वाकई हो जाएंगी इद्दत के अंदर अंदर भाई। और फिर मैंने बतलाया था कि यहां एक है खुला और एक है तलाक आला इवज। आपने हमेशा ख्याल रखना है, अमूमन तलबा को पता नहीं चलता, वो दोनों को एक ही चीज समझते हैं। नहीं, खुला के अंदर तलाक का लफ्ज नहीं जिक्र होगा, खुला के अंदर तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं होगा। बीवी आकर कहेगी कि मैं तुमसे खुला करती हूं इतने माल के बदले में, और या खावन कहता है कि मैं तुमसे खुला करता हूं इतने माल के बदले में, तो जैसे ही दूसरा शख्स इसको कबूल करेगा साथ ही तलाक बाइन हो जाएगी और बीवी पर अब वो माल लाजिम हो जाएगा। जबकि तलाक आला इवज यह है कि खावन बीवी से कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो तुम्हें तलाक है। तो यहां देखो बाकायदा तलाक का लफ्ज जिक्र कर रहा है, तो ये तलाक आला इवज है और हुक्म इसका भी यही है कि बीवी अगर कह दे मुझे मंजूर है तो साथ ही तलाक बाइन हो गई और वो माल अब औरत के जिम्मे लाजिम हो गया, अब वो उसको अदा करना पड़ेगा। तो खुला का हुक्म भी तलाक बाइन है, खुला से भी तलाक बाइन होती है और तलाक आला इवज के अंदर भी तलाक बाइन होती है। हुक्म दोनों का एक ही है लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और बाज अहकाम में दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, जैसे आगे साहिब हिदाया भी जिक्र फरमाएंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इनकाना नुशूज़ु मिन क़िबलिही युकरहु लहू अन याखुज़ मिन्हा इवज़न लिक़ौलिही तआला व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज इला अन क़ाला फला ताखुज़ू मिन्हु शैआ। व इन काना नुशूज, नुशूज याद रखो खावंद और बीवी का एक दूसरे से नफरत करना, यह नुशूज कहलाता है। या इसी तरह बीवी खावंद की नाफरमानी करे तो उसको भी नुशूज कहते हैं। तो बहरहाल यहां यह नफरत के माना में है। भाई देखो खुला की बात चल रही है, बीवी खुला करती है खावंद से, तो जाहिर सी बात है मालूम होता है कि अब खुशगवार जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है इन मियां बीवी के दरमियान। भाई तो अब बीवी खुला कर रही है और जाहिर सी बात है कि नफरत या तो बीवी की तरफ से होगी या खावंद की तरफ से। तो अगर नफरत खावंद की तरफ से है तो फिर उसके लिए इवज लेना मकरूह है। एक तो वो खुद नफरत करता है, बीवी को तकलीफ में डाला हुआ है, उसके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी भी नहीं गुजार रहा और अब उसकी जान छोड़ने पर इवज भी ले रहा है, तो ये इंतहाई नापसंदीदा है, ये मकरूह है। भाई हां अलबत्ता ले सकता है, ले सकता है लेकिन है नापसंदीदा। और अगर नाफरमानी और नफरत जो है वो बीवी की तरफ से है, खावंद अगर माल लेता है तो वो जो खावंद ने महर दिया था उससे ज्यादा ना ले, अगर उससे ज्यादा लेता है तो ये मकरूह है। भाई ये मकरूह है। देखिए भाई कहते हैं वह इनकाना नुशूज़ु मिन क़िबलिही, और अगर नफरत जो है खावंद की तरफ से है, युकरहु लहू अन याखुज़ मिन्हा इवज़न, तो मकरूह है उसके लिए कि वो इवज ले उस औरत से, लिक़ौलिही तआला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व इन अरद तुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम बदलना चाहते हो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को, यानी तुम एक बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहते हो, और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वह आते तुम इहदा हुन्न किंतारा, और उनमें से एक को तुमने कसीर माल दिया हो। किंतार कहते हैं माले कसीर को। तो अगर तुम एक बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहते हो और उस एक को तुमने बहुत सा माल भी दिया है, फला ताखुदू मिन्हु शैआ, तो तुम न लो उससे कुछ भी। तो देखो यहां कुरान के अंदर वाज़ह लफ्जों में मना किया गया है कि उससे कुछ भी न लो। भाई तो मालूम हुआ खावंद का इवज लेना मकरूह है। तो देखो अगर तुम एक बीवी की जगह बदलना चाहते हो दूसरी बीवी को, यानी इस औरत को छोड़कर दूसरी जगह निकाह करना चाहते हो और इसको तुमने बहुत सा माल दिया है, तो इसे कुछ भी ना लो। तो लिहाजा देखो यहां खावंद बदलना चाहता है बीवी को, मालूम हुआ नफरत किसकी तरफ से है, खावंद की तरफ से है। तो लिहाजा ये आयत नस है इस बात पर कि खावंद का इवज लेना मकरूह है। भाई लिकौलिही ताला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व इन अरद तुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुमने इरादा किया है बदलने का एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को। मैंने बतलाया था कि ज़ौज का लफ्ज अरबी जुबान में खावंद पर भी बोला जाता है और बीवी पर भी, यहां बीवी मुराद है। और अगर तुमने इरादा किया है एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को बदलने का, इला अन काला यहां अतः के आगे अल्लाह फरमाते हैं फला ताखुदू मिन्हु शैआ, लिहाजा उससे कुछ भी ना लो, कुछ भी ना लो। भाई देखो गुज़श्ता सबक में आया था फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी, कि इन मियां बीवी पर कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत भी, बीवी के माल देकर जान छुड़ाने में। उससे पता चल रहा है बीवी माल दे तो खावंद के लिए लेने में कोई गुनाह नहीं। और यहां आया फला ताकुदू मीन हुशई आ, उससे खावंद कुछ भी ना ले, तो चूंकि दोनों नुसूस में तआरुज आ रहा है इसलिए इसको हुरमत पर महमूल नहीं किया गया, बल्कि किस पर महमूल किया गया, कराहत पर महमूल किया गया। भाई आगे देखिए, वली अन्नहु औहशहा बिल इस्तिबदाली फला यज़ीदु फी वहशतिहा बि अख़्ज़िल माल। अब यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि एक तो कुरान में मना आया है और नीज इसलिए क्योंकि नफरत करने वाला खावंद है, तो खावंद ने बीवी को वहशत में डाला हुआ है और अब उससे माल लेकर उसको मजीद वहशत में मुबतला करना चाहता है, तो लिहाजा ये मकरूह होगा भाई, यानी मकरूह है तहरीमी भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु औहशहा बिल इस्तिबदाली, और इसलिए क्योंकि खावन ने उसको वहशत में डाला है बिल इस्तिबदाली, इस्तिबदाल के जरिए वो एक बीवी के जगह दूसरी बीवी लाना चाहता है, तो बीवी को पहले ही इसने वहशत में डाल दिया है, तो अब माल लेकर उसको मजीद वहशत में न डाले। वहशत में डाला है यानी वहशत में मुबतला किया है, खौफ और घबराहट और परेशानी में मुबतला किया है। वली अन्नहु औहशहा बिल इस्तिबदाली, और इसलिए क्योंकि खावन ने बीवी को वहशत ज़दा कर दिया है बिल इस्तिबदाली, इस्तिबदाल के जरिए कि वो इसकी जगह दूसरी बीवी लाना चाहता है, फला यज़ीदु फी वहशतिहा बि अख़्ज़िल माली, लिहाजा खावन इसकी वहशत में ज्यादती न करे बि अख़्ज़िल माली माल लेकर। वह इनकान नुशूज़ मिन्हा करिहना लहू अन यअख़ुज़ मिन्हा अक्सरा मिम्मा अअताहा, वह इनकान नुशूज़ मिन्हा, और अगर नफरत बीवी की तरफ से है करिहना लहू तो हमने नापसंद किया है अन यअख़ुज़ मिन्हा कि खावंद उस औरत से ले अक्सरा मिम्मा अअताहा उससे ज्यादा जो खावंद ने उसको दिया था। अगर नाफरमानी बीवी की तरफ से भी है तो इस सूरत में भी खावंद के लिए सिर्फ उतना ही माल लेना ठीक है जितना माल यानी महर इसने दिया था, उससे जायद लेना मकरूह है भाई। तो कहते हैं वह इनकान नुशूज़ मिन्हा, और अगर नफरत बीवी की तरफ से है करिह ना लहू तो हमने नापसंद किया है यानी हमने मकरूह करार दिया है खुदा मिन्हा अक्सरा मिम्मा अअताहा कि खावंद ले उस औरत से उससे ज्यादा जो उसने उसे दिया था। वफी रिवायतिल जामिया सगीर ताबल फजलु ऐसा, भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि यह मतन कुदूरी और जाम सगीर के इबारत पर मुश्तमिल है, जहां भी मतन आ रहा है यह किसकी इबारत है, या कुदूरी की होगी या जामे सगीर की, लेकिन कहीं कहीं साहिब हिदाया मबसूत से भी इबारत ले लेते हैं, जैसे ये जो इबारत उन्होंने ली वह इनकान नुशूज़ मिन्हा करिहना लहू अन यअख़ुज़ मिन्हा अक्सरा मिम्मा अअताहा, ये किसकी इबारत है, मबसूत की है। और आगे साहिब हिदाया अब जामे सगीर की इबारत भी जिक्र फरमा रहे हैं, तो फरमाते हैं वफी रिवायत जामिया सगीर, और जामे सगीर की रिवायत में है ताबल फजलु ऐजा, ताबा यतीबू का क्या माना है, अच्छा होना, ताबल फजलु ऐजान के जायद भी अच्छा है, यानी महर जितना खावन ने दिया था उससे जायद भी औरत से इवज ले सकता है खुला के अंदर। तो कहते हैं जामे सगीर में है ताबल फजलु ऐजा के जायद भी अच्छा है, लि इतलाकी मा तलौना बद अन, बदा यब्दू बद अन का माना है शुरू करना आगाज करना, तो लि इतलाकी मा तलौना बद अन वो आयत जो हमने शुरू में तिलावत की उसके मुतलक होने की वजह से जामे सगीर के अंदर आया है कि जायद लेना भी अच्छा है, क्या दलील है, कहते हैं वो जो पहले हमने आयत जिक्र की थी वो मुतलक थी, कौन सी आयत, फला जुनाह अलैहि मा फी मफ्तदत बिह, कि खावंद और बीवी पर कोई हरज नहीं है फी मफ्तदत बिही बीवी के माल देकर जान छुड़ाने में, तो इसमें कोई कैद नहीं है कि उतना ही माल लेना है जितना खावंद ने दिया था या उससे जायद भी ले सकते हैं, तो ये मुतलक है और अलमुतलक यजरी अला इतलाक ही, लिहाजा जायद भी ले सकता है। तो कहते हैं ताबल फजलु ऐजन के जायद भी अच्छा है, लि इतलाकी मा तलौना बद अन उस आयत के मुतलक होने की वजह से जो हमने शुरू में तिलावत की, वजहुल उखरा और दूसरी रिवायत की वजह यह है वो जो मतन के अंदर आया कि मकरू है, करिहना लहू, हमने नापसंद किया है, तो उसकी वजह जो है कौलुहू अलैहि सलातु वस्सलाम फी मराति साबित इब्न कैस इब्न शम्मास अम्मा ज़ियादतु फला वक़द काना नुशूज मिनहा। हजरत साबित इब्न कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई, उनकी बीवी हुजूर अलैहि सलाम के पास तशरीफ लाई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा खावन नेक है, हर एतबार से अच्छा है, लेकिन बस मुझे वो नापसंद है, तो मुझे खौफ है कि मैं कहीं अल्लाह की हुदूद का ख्याल न रख सकूंगी, तो मैं उससे जुदाई चाहती हूं। और हज़रत साबित इब्ने कैस ने इस बीवी से निकाह के मौके पर इनको अपना बाग दिया था बतौर महर के। तो हुजूर ने फरमाया क्या तुम उनको वो बाग वापस कर दोगी जो उन्होंने तुम्हें दिया था? तो वो कहने लगी हां, वो बाग भी दे दूंगी और ज्यादा भी दे दूंगी। इतनी नफरत थी, जान छुड़ाना चाहती थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया अम्मा ज़ियादतु फला, तो जायद जो है वो तो नहीं, वही सिर्फ बाग दे देना, जायद नहीं। तो चुनांचे फिर वही बाग उनको लौटा दिया और इस तरह उन्होंने खुला कर लिया, जुदाई आ गई उनके दरमियान। तो देखो यहां पर हदीस में क्या आया, अम्मा ज़ियादतु फला, जो ज्यादती है वो नहीं। मालूम है ज्यादती को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, तो मालूम है जायद लेना मकरूह है भाई। कहते हैं वह वजहुल उखरा, और दूसरी रिवायत की वजह जो है कौलुहू अलैहि सलातु वस्सलाम फी मराति साबित इब्न कैस इब्न शम्मास, वो हजरत साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी से जो हुजूर ने फरमाया अम्मा ज़ियादतु फला, तो ज्यादा जो है वो नहीं। वक़द कान नुशूज़ मिन्हा, और तहकीक नफरत उनकी तरफ से थी, बीवी की तरफ से थी। तो देखो फिर भी हुजूर ने महर से जायद देने को नापसंद किया। वलौ अखज़ ज़ियादत जाज़ फिल क़ज़ाई, और अगर खावन ने जायद ले लिया जाज़ फिल क़ज़ाई, तो यह कजा में जायज है, अगरचे मकरूह है लेकिन कजा में भी जायज है। यानी अगर काजी के पास भी मसला चला गया तो काजी भी इसको जायज ही रखेगा। तो कहते हैं वलौ अखज़ ज़ियादत जाज़ फिल क़ज़ाई, और अगर महर से ज्यादा ले लिया तो भी ये कजा में जायज है। वकदालिक इदा अखज़ वन नुशूज़ मिन्हू, और इसी तरह है मसला जब खावंद माल ले, वन नुशूज़ मिन्हू, और नफरत भी खावंद की तरफ से हो। अगर नफरत खावंद की तरफ से है तो उसके लिए माल लेना मकरू है, लेकिन अगर ले लेता है तो कजाअन भी जायज है, काजी भी उसको रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहली आयत मुतलक थी फी मफ्तदत भी ही। तो कहते हैं वकदाली का ईदा अखदा वन नुशूज मिनहू, और इसी तरह है मसला जब खावंद ले और नफरत भी उसकी तरफ से हो। लिअन्ना मुक्तजा मा तलौना हुशै आनी, इसलिए क्योंकि मुक्तजा उस आयत का जिसको हमने तिलावत किया, उसका मुक्तजा दो चीजें हैं। वो जो आयत हमने तिलावत की थी फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी, इस आयत का मुक्तजा दो चीजें हैं, अल जवाज हुक्म वल इबाहतु, एक तो हुक्म के एतबार से यह जायज है, वल इबाहतु, और दूसरा मुबाह होना। एक हुक्म के एतबार से जायज है, यानी शरअन यह जायज है, शरअन जायज है, यानी इस पर इसके अहकाम मुरतब हो जाएंगे भाई। अगर एक चीज शरअन जायज ही ना हो तो फिर वहां उसके अहकाम भी उस पर मुरतब नहीं होते। जैसे गुज़श्ता सबक के अंदर जिक्र आया था कि अगर तहलील की शर्त पर कोई शख्स निकाह करता है तो बाज़ फुकहा क्या फरमाते हैं, यह शरअन जायज ही नहीं है, क्योंकि हदीस में लानत का जिक्र है। जब यह जायज ही नहीं है तो ये निकाह भी नहीं हुआ, जब ये निकाह नहीं हुआ तो यह तहलील भी नहीं हुई, और बीवी पहले खावन के लिए हलाल भी नहीं है भाई। जबकि हमारे नजदीक वो निकाह जायज था और उस पर अहकाम भी मुरतब हुए और बीवी पहले खावन के लिए हलाल हो गई भाई। तो इस आयत का मुक्तजा दो चीजें हैं, अल जवाज हुक्म वल इबाहतु, एक तो जायज होना हुक्म के एतबार से, यानी ये शरअन जायज है, जायद माल ले सकता है खावन, वल इबाहतु, और दूसरा मुबाह होना, यानी वो माल उसके लिए हलाल है। वो माल क्या है, उसके लिए हलाल है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो दो चीजें मालूम हो रही थी उस आयत से। फला जुनाह अलैहि माफी मफ्तदत बिही, मियां बीवी पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं है बीवी के माल देकर जान छुड़ाने में। मालूम हुआ खावन जायद भी ले सकता है और उसके लिए हलाल भी है, उस पर कोई गुनाह नहीं उसके इस्तेमाल में। तो दो चीजें मालूम हुई इस आयत से, एक अल जवाज हुक्म वल इबाहा, तो एक हुक्म के एतबार से जायज होना और दूसरा मुबाह होना यानी हलाल होना। वक़द तुरिकल अमल फी हक़िल इबाहति लि मुआरिज़िन, और तहकीक अमल को तर्क कर दिया गया इबाहत के हक में, लि मुआरिज़िन एक मुआरिज़ की वजह से। भाई तवज्जो से सुनो, मुश्किल जगह है। आयत से दो चीजें मालूम हुई, एक तो ये कि ये शरअन जायज है, जायद लेना खावन के लिए शरअन जायज, और दूसरा ये जो जायद माल है ये भी खावन के लिए हलाल है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस आयत के मुकाबिल हदीस आ गई, अम ज़ियादतु फला, कि जो जायद है वो नहीं। तो इससे मालूम हुआ जायद लेने को हुजूर ने नापसंद फरमाया भाई। तो लिहाजा इस आयत से दो चीजें साबित हो रही थी, जवाज और इबाहत, लेकिन इबाहत के मुकाबले में तो वह हदीस आ गई, तो ये इबाहत वाला हुक्म तो खत्म हो जाएगा, यानी जायद जो है वह मकरूह होगा। अलबत्ता जवाज के हुक्म में यह आयत उसी तरह बाकी है। दो चीजें मालूम हुई थी ना, एक जवाज और एक इबाहत। इबाहत के मुकाबले में तो हदीस आ गई, तो इबाहत तो नहीं है, अलबत्ता जवाज है, खावन जायद ले सकता है, यह जायज है, काजी भी उसको रद्द नहीं कर सकता। तो कहते हैं वक़द तुरिकल अमलु फी हक़िल इबाहती, और इबाहत के हक में अमल को तर्क कर दिया गया, लि मुआरिज़िन एक मुआरिज नस के आने की वजह से, और वो हुजूर का कौल क्या है, अम्मा ज़ियादतु फला फबकिया मामूलन फिल बाकी। तो ये नस जो है, ये जो आयत थी, कौन सी आयत, फला जुना हाले हिमाफी मफ्तदत भी, ये जो आयत है फबकिया मामूलन, तो ये आयत मामूल होकर बाकी रहेगी, फिल बाकी, बाकी के अंदर। इबाहत के अंदर तो अमल को तर्क कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो जवाज मालूम हो रहा था उसके अंदर ये आयत मामूल भी ही रहेगी, इस पर अमल किया जाएगा। तो ये माना है फबकिया मामूलन फिल बाकी, फबकिया के अंदर जमीर लौटाएं नस को, ये जो पीछे नस आई थी, ये जो आयत थी फबकिया, तो ये नस बाकी रहेगी, मामूलन फिल बाकी, बाकी के अंदर मामूल भी ही होकर। बात समझ में आ गई। यहां इश्काल होता है, इश्काल ये कि आप आयत के मुकाबले में हदीस पेश कर रहे हैं, और यह हदीस भी खबर वाहिद है, खबर मशहूर नहीं है, और खबर वाहिद जो है वो तो आयत के मुआरिज और मुकाबिल नहीं बन सकती भाई। तो उसका जवाब देते हैं उलमा कि भाई जब आयत के अंदर तख्सीस आ जाए या आयत के मुकाबिल कोई और आयत आ जाए, तो फिर इस सूरत में वो आयत कतई नहीं रहती। जब आयत से क्या हो जाए, तख्सीस आ जाए, तो वो आयत कतई नहीं रहती, वो जन्नी बन जाती है। और इसी तरह अगर आयत के मुकाबिल एक और आयत आ जाए तो भी उसकी कतईयत बाकी नहीं रहती भाई। और यहां पर भी इस आयत के मुकाबिल दूसरी आयत मौजूद है, फला तअखुज़ु मिन्हु शैआ, फला तअखुज़ु मिन्हु शैआ, ये आयत उस आयत के मुकाबिल मौजूद है, तो लिहाजा वो आयत कतई न रही। तो जब वो कतई न रही तो यह हदीस उसके मुआरिज हो सकती है, या यूं कहें दूसरे लफ्जों में कि यहां हदीस आयत के मुआरिज नहीं है, बल्कि आयत आयत के मुआरिज है, और हदीस ताइद कर रही है एक आयत की, तो यहां आयत का मुआरिज आयत ही है, हदीस नहीं है, हदीस उनमें से एक की ताइद कर रही है भाई। फिर यहां दूसरा इश्काल होता है, इश्काल यह कि आपने हमें कहा कि आयत से दो चीजें साबित हो रही हैं, एक जवाज और एक इबाहत, जायज भी है और मुबाह भी है। भाई ये दोनों तो एक ही चीज हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है, जो जायज होगी वो मुबाह होगी, जो जायज नहीं है वो मुबाह नहीं है, आप कैसे दोनों के अंदर फर्क कर रहे हैं? तो जवाब यह कि नहीं, दोनों में फर्क है भाई, एक चीज जायज हो और मुबाह ना हो, ऐसा हो सकता है। जायज हो यानी उस पर उसके अहकाम तो मुरतब हो लेकिन वो मुबाह ना हो बल्कि मकरूह हो। जैसे अभी मैंने निकाह की मिसाल जिक्र कर दी कि हलाल करने की शर्त पर निकाह करेगा तो यह जायज है, निकाह हो जाएगा, अलबत्ता यह मकरूह है। तवज्जो है, याद रखो दो चीजें जिक्र की, एक जवाज और एक इबाहत। जवाज के मुकाबले में है हुरमत, जवाज के मुकाबले में हुरमत है, यानी खावंद का जायद लेना शरअन हराम नहीं है, जायज है। और इबाहत के मुकाबले में है कराहत, तो वो इबाहत खत्म हुई, उसकी जगह क्या आ गई, कराहत आ गई। तो एक चीज जायज भी हो और मकरूह भी हो, जैसे वो तहलील की शर्त पर निकाह किया था, वो निकाह जायज है यानी हो गया, उस पर उसके अहकाम मुरतब होंगे, और मकरूह है यानी सख्त नापसंदीदा है शरअन भाई। तो जवाज और इबाहत एक दूसरे के साथ लाजिम नहीं है, जहां भी जवाज हो वहां इबाहत हो जरूरी नहीं, बल्कि जवाज के साथ कराहत भी आ सकती है भाई। आगे देखिए, वह इन तल्लका अला मालिन फकबिलत वकअत तलाक वलजिमा हल माल अन्न ज़ौज यस्तबिद्दु बित्तलाकी तंजीजन औ तालीका। सूरत है मसला ये, खावंद ने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं इतने माल की शर्त पर, कोई माल जिक्र कर दिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं इतने माल की शर्त पर। बीवी कहती है मुझे कबूल है, याद रखो जैसे ही कबूल करेगी तलाक वाके हो गई और औरत के जिम्मे माल लाजिम हो गया। तो खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था बीवी के कबूल करने पर, बीवी के कबूल करने पर मुअल्लक किया था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं इतने माल की शर्त पर, यानी अगर तुम कबूल करती हो तो तुम्हें इतने माल पर तलाक है। तो इस सूरत के अंदर जैसे ही बीवी कबूल करेगी तो शर्त पाई गई, और जब शर्त पाई जाए तो जजा जरूर आती है। जैसे खावन बीवी से कहता है इन दखलती दार फअंती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो जैसे ही उस घर में जाएगी उसे क्या हो जाएगी, तलाक। तो यहां पर भी खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है बीवी के कबूल करने पर, बीवी के भाई, इसलिए क्योंकि बीवी पर माल लाजिम होना है और बगैर किसी की रजामंदी के तो उस पर माल लाजिम नहीं हो सकता, तो बीवी कबूल करेगी तो उस पर माल लाजिम हो जाएगा। तो खावन ने भी क्या कहा है, मैं तुम्हें इतने माल की शर्त पर तलाक देता हूं, गोया खावन ये तलाक मुअल्लक कर रहा है बीवी के कबूल करने पर, और बीवी जैसे कबूल करेगी शर्त पाई गई, और शर्त पाई गई तो मशरूत यानी तलाक भी वाकई हो जाएगी। व इन तल्लका अला मालिन, और अगर खावन ने बीवी को तलाक दी माल पर, फकबिलत तो औरत ने कबूल कर लिया, वकअत तलाक तो तलाक उसी वक्त वाकई हो जाएगी, वलजिमा हल मालू और औरत पर वो माल लाजिम हो जाएगा, लिअन्न ज़ौज यस्तबिद्दु बित्तलाकी तंजीजन औ तालीका। इस्तबद्दा यस्तबिद्दु इस्तिबदाद का माना है मुस्तकिल होना, खुद मुख्तार होना, इसलिए क्योंकि खावन जो है तलाक के अंदर खुद मुख्तार है, चाहे वो तंजीज के तरीके पर तलाक दे या तालीक के तरीके पर। तंजीज का क्या माना, पूरा करना, उसी वक्त तलाक दे देना, मसलन खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन, तो ये तंजीज है, उसी वक्त तलाक हो गई। और तंजीज के मुकाबले में तालीक है, तालीक क्या कि मसलन अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, अब उस घर में जाएगी तो तलाक होगी। तो खावन मुस्तकिल है, ये इसका अपना इख्तियार है, वो बीवी को तंजीजन भी तलाक दे सकता है और तालीकन भी दे सकता है, और यहां उसने तलाक को बीवी के कबूल पर मुअल्लक कर दिया है कि मैं तुझे इतने माल की शर्त पर तलाक देता हूं, तो बीवी के कबूल पर उसने तलाक को मुअल्लक कर दिया है, लिहाजा यह तालीक सही है भाई। तो कहते हैं लिअन्न ज़ौजा यस्तबिद्दु बित्तलाकी तंजीजन औ तालीका, और खावन जो है वो मुस्तकिल है तलाक के अंदर तंजीज या तालीक के तरीके पर, वकद अल्लकहु बिकबूलिहा, और यहां खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है यानी तलाक की तालीक की है, बिकबूलिहा औरत के कबूल करने के साथ, वलमरअतु तमलिकुल तिज़ामल माली, और औरत मालिक है कि वह अपने ऊपर माल को लाजिम करे, आकिल बालिग जो है वो अपने ऊपर माल को लाजिम कर सकता है। एक आदमी मजलिस में बैठा है और सबके सामने कहता है मैंने जैद का 10 लाख रुपया देना है, तो गोया वो अपने ऊपर 10 लाख रुपए लाजिम कर रहा है, तो आकिल बालिग अपने ऊपर माल को लाजिम कर सकता है। तो यहां औरत भी जब कबूल कर रही है वो अपने ऊपर इस माल को लाजिम कर रही है, और उसको इख्तियार है, वो अपने ऊपर माल को लाजिम कर सकती है। तो कहते हैं वल मरअत तमलिकु इल्तिजाम अल माली, और औरत मालिक है माल का इल्तिजाम करने की कि अपने ऊपर माल को लाजिम करे। लिविलायतिहा अला नफसिहा, क्योंकि औरत को अपनी जात पर विलायत हासिल है, वो अपने ऊपर माल को लाजिम कर सकती है। वह मिल्कु निकाह मिम्मा यजूज़ुल इतियाज़ु अनहु, और मिल्के निकाह उन चीजों में से है कि यजूज़ुल इतियाज़ु अनहु, इतियाज बैजाद के साथ ये इवज से है, मिम्मा ये कि निकाह जो है उन चीजों में से है, यजूज़ुल इतियाज़ु अनहु के उससे इवज लेना जायज है। वह इल्लम यकुन मालन, अगरचे ये माल नहीं है, कल किसासी जैसे कि किसास, भाई देखो एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को जानबूझकर आलाए कत्ल के जरिए कत्ल कर दिया तो वहां किसास आता है। और आप जानते हैं मकतूल के अवलिया जो हैं वो सुलह भी कर सकते हैं किसास लेने के बजाय, वो माल ले लेते हैं कातिल से। तो देखो अब वो किसास का इवज माल ले रहे हैं, हालांकि किसास तो माल नहीं, किसास तो माल नहीं। तो जैसे किसास माल नहीं लेकिन उसका इवज लेना जायज है भाई, वो जितने में भी सुलह करते हैं जितना माल भी वो मांगते हैं कातिल अगर देता है तो वो सुलह हो जाएगी भाई। तो जैसे किसास माल नहीं लेकिन उसका इवज लेना जायज है, इसी तरह मिलके निकाह अगरचे माल नहीं है, मिलके निकाह जो है वो माल नहीं लेकिन उसका इवज लेना जायज है, लिहाजा खावंद उसका इवज ले सकता है भाई। तो कहते हैं वह मिल्कु निकाह मिम्मा यजूज़ुल इतियाज़ु अन्हु, और मिल्के निकाह उन चीजों में से है कि जायज है उससे इवज लेना। वह लम यकुन मालन, अगरचे वो माल नहीं है, कल किसासी जैसे कि किसास है। वकानत तलाकु बाइनन, और तलाक बाइन होगी, खावन ने क्या कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं इतने माल की शर्त पर, बीवी ने कबूल कर लिया तो तलाक बाइन होगी। तो कहते हैं वकानत तलाक बाइनन, और तलाक बाइन होगी, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी, क्योंकि औरत इवज दे रही है, औरत तभी इवज देने पर राजी होगी जब उसकी जान खावन से छूटेगी, और जब जान नहीं छूट रही तो फिर वो इवज देने पर भी राजी नहीं। और तलाक बाइन के अंदर जान छूटती है, तलाक रजई के अंदर तो औरत की जान नहीं छूटती, वहां तो खावंद रुजू कर सकता है भाई। तो कहते हैं तलाक बाइन होगी, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। वली अन्नहु मुआवजतुल माल बिन नफ्सी, और इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है नफ्स के साथ। अगर एक तरफ से औरत माल दे रही है तो दूसरी तरफ उसकी जान छूट रही है, तो जब खावंद माल का मालिक बनेगा तो औरत अपनी जान की मालिक बन जाएगी, फिर ही मुसावात होगी कि खावंद जब माल का मालिक बन रहा है तो औरत अपनी जान की मालिक बन जाएगी। यानी पहले इसकी जान के अंदर खावंद का भी हक था, खावंद भी जब चाहे इससे सोहबत कर सकता था, लेकिन अब औरत की जात खालिस उसकी अपने लिए हो गई। तो जब खावंद इवज का माल का मालिक बना है तो बीवी की जान खालिस उसी की होनी चाहिए, तो तब ही मुसावात होगी भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु मुआवजतुल माल बिन नफ्सी, और इसलिए क्योंकि ये माल का मुआवजा है नफ्स के साथ। वकद मलक जौजु अहद अल बदलैनी, और तहकीक खावंद मालिक बन गया है दो बदलों में से एक का, यानी माल का। फतम लिकु हियल आखरत, तो औरत मालिक बनेगी दूसरे बदल की। वह हुआ नफ्सु, और वो उसकी जात है। तहकीकन लिल मुसावात, मुसावात साबित करने के लिए। قال وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا. سورت مسئلہ یہ کہ عورت نے خاون سے خلع کیا لیکن وہ عوض باطل ہے جو عوض ذکر کیا تھا مثلا شراب ذکر کی تھی یا خنزیر ذکر کیے تھے یا مردار ذکر کیا تھا اب شراب اور خنزیر یہ تو غیر مسلموں کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک تو یہ مال متقوم نہیں مسلمان کے لیے خمر اور خنزیر کا نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے तमल्लुक यानी खुद भी मालिक नहीं बन सकता और तमलीक यानी दूसरे को भी मालिक नहीं बना सकता भाई। तो खमर और खिंजीर गैर मुस्लिमों के नजदीक माल है मुसलमानों के नजदीक माल नहीं, जबकि मुर्दार ये तो किसी के नजदीक भी माल नहीं है भाई। तो अगर औरत ने खुला के अंदर इवज जो जिक्र किया वो इवज बातिल हो यानी शराब या खिंजीर या मुर्दार हो, वो इवज नहीं हो सकता, तो फिर खावंद के लिए कहते हैं कुछ भी नहीं होगा और तलाक बाइन हो जाएगी। तो कहते हैं काल अब इन बतल इवज फिल खुलाई, और अगर इवज बातिल हो जाए खुला के अंदर, मिसलु अन युखाल अल मुस्लिम अला खमरिन औ खिंजीरिन औ मैततिन, जैसे कि एक मुसलमान जो है वो खुला कर ले शराब पर या खिंजीर पर या मुर्दार पर, फला शई अली जौजी, तो खावन के लिए कुछ भी नहीं होगा, वल फुरकतु बाइनतुन, और जुदाई जो होगी वो बाइन होगी यानी तलाक बाइन वाके होगी। वह इन बतल अलईवज उफी तलाकी कान अरज अय्या, और अगर अईवज बातिल हुआ तलाक के अंदर, कान अरज अय्यन, तो वह तलाक रजई होगी। देखो फर्क आ गया खुला और तलाक अला अईवज में। खुला के अंदर अगर अईवज बातिल होगा तो तलाक बाइन होगी, फुरकत बाइना होगी, और बीवी पर कुछ माल भी लाजिम नहीं होगा भाई, क्योंकि अईवज तो बातिल हो गया। जबकि तलाक आला इवज के अंदर अगर इवज बातिल हो गया, यानी शराब या खिंजीर या मुर्दार के इवज के अंदर तलाक देता है खावन, और तो ये इवज तो बातिल है भाई, तो फिर इस सूरत में याद रखो कि तलाक रजई होगी। क्या होगी? तलाक रजई। अब उसकी वजह साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं वह इन बतल अईवज उफी तलाकी कान रजईयन, और अगर अईवज बातिल हुआ तलाक के अंदर तो तलाक रजई होगी। फवुकू तलाक फिल जी, तो अब साहिब हिदाया वजह जिक्र फरमाएंगे। कहते हैं फवुकू तलाक फिल वजहैनी, तो तलाक का वाके होना दोनों सूरतों में, यानी खुला के अंदर भी और तलाक आला इवज के अंदर, दोनों के अंदर तलाक का वाके होना, लि तालीक बिल कबूली, कबूल के साथ तालीक करने की वजह से, कि खावन ने मुअल्लक किया था जुदाई को किसके साथ? बीवी के कबूल करने पर। खुला में भी क्या कहता है कि मैं तुमसे खुला करता हूं शराब के इवज या खिंजीर के इवज, तो देखो यहां पर भी तालीक कर रहा है औरत के कबूल करने पर। औरत कबूल करे तो उसके जिम्मे माल आ सकता है, औरत कबूल ना करे तो उसके जिम्मे माल नहीं आ सकता। तो गोया यहां पर भी खुला को मुअल्लक कर रहा है बीवी के कबूल करने पर। और तलाक अला इवज में भी इसी तरह है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं इतने माल के बदले में, और बीवी क्या कहती है? मुझे कबूल है। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? बीवी का कबूल क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके ऊपर माल वैसे लाजिम नहीं हो सकता। आप किसी पर माल बगैर उसके कबूल किए लाजिम नहीं कर सकते भाई। कोई शख्स अपने ऊपर खुद माल लाजिम करे तो लाजिम होगा, वैसे उसके ऊपर माल लाजिम नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए औरत का कबूल करना जरूरी है। तो गोया वो खुला या तलाक को मुअल्लक कर रहा है बीवी के कबूल करने पर, और बीवी ने तो कबूल कर लिया। जब बीवी ने कबूल कर लिया तो खुला भी आया और तलाक भी आई। अलबत्ता वो माल नहीं आएगा क्योंकि वो माल बातिल है भाई। तो खुला के अंदर अलबत्ता तलाक बाइन आएगी और तलाक आला इवज के अंदर तलाक रजई आएगी भाई। तो वो अब सारी तफसील साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि तलाक दोनों सूरतों में आएगी, तलाक दोनों सूरतों में आएगी। उसकी क्या वजह है? कहते हैं फवुकू तलाक फिल वजहैनी, कि तलाक का वाके होना दोनों सूरतों में यानी खुला और तलाक अला इवज के अंदर, लि तालीक बिल कबूली, कबूल के साथ तालीक की वजह से, कि खावन ने खुला या तलाक को बीवी के कबूल के साथ मुअल्लक किया है। वफ्तिराकुहुमा फिल हुक्मी, और इन दोनों का हुक्म में मुख्तलिफ होना, जुदा होना, कि खुला के अंदर तलाक बाइन आ रही है और तलाक अला इवज के अंदर तलाक रजई आ रही है, तो उसकी क्या वजह है? वो बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वफ्तिराकुहुमा फिल हुक्मी, और हुक्म के अंदर इन दोनों का मुख्तलिफ होना, लिअन्नहु लम्मा बतल अलईवज, इसलिए क्योंकि जब इवज बातिल हो गया, कान अल आमिल फिल अव्वल लफ्ज अल खुलई, तो वो जो अमल करने वाला है पहली सूरत में वो खुला का लफ्ज है, वो हुआ किनायतुन, और खुला क्या है? किनाया है, और किनायात के जरिए कौन सी तलाक होती है? बाइन, तो इसलिए बाइन हुई। वफिस्सान सरीहु, और दूसरी सूरत के अंदर तलाक अला इवज के अंदर वो लफ्ज क्या है? सरीह है। वह हुआ युअक्किबु रजअता, और लफ्ज सरीह अपने पीछे रुजू को लाता है। वह इन्नमा लम यजिब लिज़्ज़ौज शैउन अलैहा, अब सवाल यह पैदा होता है कि दोनों सूरतों में बीवी पर माल लाजिम नहीं, उसकी क्या वजह है? अब वो वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह इन नमा लम यजिब लि ज़ौजी शैउन अलैहा, और खावन के लिए बीवी पर कोई भी चीज वाजिब नहीं हुई, लिअन्नहा मा सम्मत मालन मुतकव्विमन, इसलिए क्योंकि बीवी ने कोई माल मुतकव्विम जिक्र नहीं किया। माल मुतकव्विम उसे कहते हैं वो माल जिसकी कीमत हो, मुतकव्विम कीमत वाला, तो शराब और खिंजीर और मुर्दार ये माल मुतकव्विम नहीं, मुर्दार तो किसी के नजदीक भी माल मुतकव्विम नहीं, और शराब और खिंजीर मुसलमान के नजदीक माल मुतकव्विम नहीं और गैर मुस्लिमों के नजदीक माल मुतकव्विम है। तो यहां औरत ने ऐसी चीज जिक्र की है जो माल मुतकव्विम नहीं है, माल मुतकव्विम नहीं है, लिहाजा अगर औरत ने माल मुतकव्विम जिक्र किया होता तो फिर हम कहते कि औरत को इवज देना पड़ेगा, इसने धोखा दिया है, औरत ने धोखा दिया है, लेकिन उसने तो माल मुतकव्विम जिक्र ही नहीं किया, उसने तो शराब खिंजीर या मुर्दार जिक्र किए हैं। तो कहते हैं लिया नहा मा सम्मत मालम मुतकव्विमन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने माल मुतकव्विम जिक्र नहीं किया, हत्ता तसीरा घार रतन लहू, यहां तक कि औरत उसको धोखा देने वाली हो जाए। गर्रा या गुर्रु, गर्रम व गुरूरन का क्या माना है? धोखा देना। गर्रा या गुर्रु, गर्रम व गुरूरन, और धोखा देने वाला फहुआ गारुन, और जिसको धोखा दिया जाए वो मगरूर है, फदा का मगरूरुन भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा मासम मत मालम मुतकव्विमन, इसलिए क्योंकि औरत ने कोई माल मुतकव्विम जिक्र नहीं किया, हत्ता तसीरा गार रतन लहू, यहां तक कि वो उसको धोखा देने वाली हो जाती, वली अन्नहु ला वजह इला इजाबिल मुसम्मा लिल इस्लामी, और इसलिए क्योंकि कोई वजह नहीं है कि मुसम्मा को वाजिब किया जाए, वो मुसम्मा यानी जिसको उसने जिक्र किया है उसके वाजिब करने की कोई सूरत नहीं है, लिल इस्लामी इस्लाम की वजह से, क्योंकि मुसलमान के लिए खमर और खिंजीर का न तमल्लुक जायज ना तमलीक जायज, वला इला इजाबी गैरी ही, और इनके अलावा कोई और चीज भी हम वाजिब नहीं कर सकते, ले आदम इल्तिजामी, क्योंकि बाकी चीजों का तो औरत ने अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया, उसने तो सिर्फ किसका इल्तिजाम किया था, शराब या खिंजीर या मुर्दार का, तो हम कोई और चीज उसके ऊपर लाजिम कर दें? नहीं भाई, उसने सिर्फ किसका इल्तिजाम किया था, शराब खिंजीर या मुर्दार का, और वो तो बातिल है इस्लाम की वजह से, तो और कोई चीज हम लाजिम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी चीजों का उसने इल्तिजाम नहीं किया। तो कहते हैं वला इला इजाबी गैरी ही, और इस मुसम्मा के अलावा किसी और के वाजिब करने की कोई सूरत नहीं है, ले आदमी लिल्तिजामी, क्योंकि औरत ने उसका इल्तिजाम नहीं किया, बिखिलाफ इमा इदा खाला अला खलिम बिआईनी ही फजहरा अन्नहु खमरुन। हां, इसके बजाय दूसरी सूरत है, बीवी ने खावन से कहा कि ये जो सिरके का मटका भरा हुआ है इसके इवज मुझसे खुला कर लो, इस पर मुझसे खुला कर लो, खावंद राजी हो गया, खावंद का मुझे मंजूर है, जैसे ही खावंद ने मंजूर है कहा साथ ही तलाके बाइन आ गई, तलाके बाइन आ गई, लेकिन जब उस सिरके को देखा गया तो वो सिरका नहीं था, वो तो शराब थी भाई। तो अब इस सूरत में कहते हैं औरत ने सिरका जिक्र किया था और सिरका है माले मुतकविम, तो लिहाजा औरत धोखा देने वाली हो गई, तो यहां उसको इवज देना पड़ेगा, यहां उसको इवज देना पड़ेगा, और कितना इवज देगी? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसको अपना महर देना पड़ेगा वापस, जो खावन से इसने महर लिया था वो ही वापस कर देगी, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इसी शराब के बराबर सिरका देना पड़ेगा मुतवस्सित दर्जे का, यानी यही मटका भरकर सिरका देना पड़ेगा मुतवस्सित दर्जे का, बिखिलाफी माइदा खाला आला खलिम बिआईनी ही, बखिलाफ इसके कि जब खावन ने खुला कर लिया किसी मुअय्यन सिरके पर, फजहरा अन्नहु खमरुन, तो ये बात जाहिर हुई कि वो शराब है, लिअन्नहा सम्मत मालन, इसलिए क्योंकि औरत ने माल जिक्र किया है, फसारा मगरूरन, तो खावन मगरूर हो गया यानी धोखा दिया हुआ हो गया, मगरूर इसमें मफूल है जिसको धोखा दिया गया हो, फसारा मगरूरन, तो खावन धोखा दिया हुआ हो गया, व बिखिलाफ माइदा का तबा औ आतका अला खमरिन, और बखिलाफ उस सूरत के जब आका ने मुकातब बनाया औ आतका अला खमरिन, या आजाद किया शराब की शर्त पर। भाई दूसरी सूरत, आका ने गुलाम के साथ अकदे किताबत किया अक़्द किताबत में क्या होता है कि इतने अरसे में अगर तुम इतना माल ले आओ तो तुम आजाद हो। तो आका ने शराब जिक्र कर दी यहां पर, या आका ने गुलाम को मुकातब नहीं बनाया, आजाद किया है शराब की शर्त पर कि इतनी शराब के बदले मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तो इस सूरत के अंदर याद रखो, मुकातब अपनी कीमत के बराबर माल ला कर देगा, क्योंकि शराब में तो मुसलमान के लिए ना तमल्लुक जायज है ना तमलीक, तो शराब तो नहीं दे सकता, लेकिन इवज जरूर देना पड़ेगा और वो फिर अपनी कीमत देगा। तो कीमत कमा कर ला कर दे दे, जितनी कीमत है इसकी, तो ये आजाद हो जाएगा। और अगर गुलाम को आजाद किया कि शराब की शर्त पे मैं तुम्हें आजाद करता हूं, इतनी शराब ले आओ, तो यहां भी गुलाम को अपनी कीमत देना पड़ेगी, बगैर कीमत के आजाद नहीं। देखिए भाई कहते हैं वह बिखिलाफ इमा ईदा का तबा, बखिलाफ इस सूरत के जब आका ने अपने गुलाम को मुकातब बनाया और आतका अला खमरीन, या उसको आजाद किया शराब की शर्त पर, है सुत्ता जिबू कीमतुल अब्दी, क्योंकि गुलाम की कीमत वाजिब होगी। यानी ये मसला पहले मसले के बरखिलाफ है, ऊपर वाले मसले में खुला और तलाक आला इवज के अंदर जब इवज बातिल हो गया था तो औरत पर उसके बदले में कोई और चीज हमने लाजिम नहीं की, और यहां पर मुकातब और एताक के अंदर अगर इवज बातिल हो जाए तो यहां उसके बदले में कोई ना कोई चीज आएगी भाई, बगैर इवज के किताबत भी नहीं होगी और बगैर इवज के एताक भी नहीं। तो दोनों में फर्क की वजह क्या है? खुला और तलाक आला इवज, वहां आप कहते हैं इवज बातिल हो जाए तो कोई और चीज इवज में नहीं आएगी, और एताक या किताबत के अंदर अगर इवज बातिल हो जाए तो वहां आप कहते हैं उस गुलाम की फिर कीमत आएगी, इवज से वो खाली नहीं होगा। तो जवाब ये कि दरअसल वो जो खुला के अंदर खावंद की मिल्कियत खत्म हो रही थी, खुला के अंदर खावंद की मिल्कियत खत्म हो रही थी, और मिलके निकाह जो है वो माले मुतकविम नहीं है, तो जो चीज खत्म हो रही है वो माले मुतकविम ही नहीं है, लिहाजा इसके बदले में इवज का आना जरूरी नहीं है। इवज बातिल हो गया तो कोई हर्ज नहीं, ये माले मुतकविम भी नहीं था भाई, ये मिलके निकाह कोई माले मुतकविम नहीं, लिहाजा यहां इवज नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ वहां पर जो गुलाम को मुकातब बना रहा है या उसको आजाद कर रहा है और इवज बातिल हो रहा है, वहां जो चीज आका के हाथ से निकल रही है वो माले मुतकविम है, वो गुलाम आका के हाथ से निकल रहा है, तो माले मुतकविम उसके अंदर तो आका मुफ्त में हाथ से निकलने पर राजी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जबकि मिलके निकाह वो तो माले मुतकविम नहीं है, अगर वो बगैर इवज के भी निकले तो उसमें कोई हरज नहीं है भाई। देखिए साहिब हिदायत और बेहतर अल्फाज में खूब वजाहत के साथ जिक्र फरमाएंगे, कहते हैं लिअन्ना मिल्कल मौला फीही मुतकविमुन, इसलिए क्योंकि आका की मिल्कियत जो इस गुलाम के अंदर थी मुतकविमुन, वो कीमत वाली है, गुलाम क्या है माले मुतकविम है। वमा रजिया भी जवाली ही मज्जानन, और आका राजी नहीं है इसके जायल होने पर, मज्जानन मुफ्त में, आका इस मिल्के मुतकविम के मुफ्त जायल होने पर राजी नहीं है, जबकि वहां पर वो मिलके निकाह वो मिलके मुतकविम नहीं है भाई। तो अगर इवज ना भी आया कोई हरज नहीं, वो तो कीमत वाली चीज ही नहीं है। आगे देखिए, अम्मा मिल्कुल बुज़ई हालतिल खुरूजी गैर मुतकविमिन अला मा नज़कुरुह व बिखिलाफ निकाह लिअन्नल बुज़ा फी हालति दुखूल मुतकविमुन। अम्मा मिल्कुल बुज़ई, मैंने आपको बतलाया था बुज़ुन ये औरत की शर्मगाह को कहते हैं, तो कहते हैं अम्मा मिल्कुल बुज़ई, बाकी बुज़ा का मालिक होना, बुज़ा का यानी उसके मनाफिया का मालिक होना कि वो खावंद के लिए हलाल हो जाए, तो कहते हैं अम्मा मिल्कुल बुज़ई, बाकी मिलके बुज़ा फी हालतिल खुरूजी खुरूज की हालत में, गैर मुतकविमिन वो कीमत वाली नहीं है, अला मा नज़कुरु उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे, आगे चंद लफ्जों के बाद ही साहिब हिदायत जिक्र फरमाएंगे इसी सतर में, अगली सतर में कहते हैं अम्मा मिल्कुल बुज़ई फी हालतिल खुरूजी। देखो कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो उसको मिलके बुज़ा हासिल होती है, यानी वो उस औरत से नफा उठा सकता है, जब चाहे उसके साथ सोहबत कर सकता है। तो ये जो मिलके बुज़ा है ये जब मिल्कियत में दाखिल होगी तो उस वक्त ये मुतकविम है, जब मिलके बुजा मिल्कियत में आएगी तो यह मुतकविम है, क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अंतब तहू भी अमवालिकुम, मुहर्रमात के अलावा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, अंतब तहू भी अमवालिकुम, इनको तुम अपने मालों के जरिए तलाश करो। मालूम हुआ निकाह के अंदर माल जरूर आएगा। मालूम हुआ मिलके बुजा दुखूल के वक्त यानी अपनी मिल्कियत में दाखिल होते वक्त यह मुतकविम है, और मिलके बुजा खुरूज के वक्त मुतकविम नहीं। कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो क्या बीवी को माल देना पड़ता है हमेशा? नहीं, बीवी को माल नहीं देना पड़ता भाई। तो अब वो देखो मिलके बुजा क्या है, मिल्कियत से निकल रहा है। तो मिलके बुजा मिल्कियत में दाखिल हो तो वो मुतकविम है, वहां महर देना पड़ेगा, माल खर्च करना पड़ेगा, बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता भाई। और मिलके बुजा खुरूज के वक्त जो है वो मुतकविम नहीं है, जब वो मिल्कियत से निकल रहा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वहां माल नहीं दिया जाता आमतौर पर। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अम्मा मिल्कुल बुज़ई फी हालतिल खुरूजी गैरु मुतकविमिन, और बाकी मिलके बुज़ा जो है वो खुरूज की हालत में कीमत वाली चीज नहीं है। अला मा नज़कुरु, उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे। मैंने बताया आपको कि ये अला इल्लत बयान करने के लिए आता है, तो अला मा नज़कुरु, उस वजह से जो हम जिक्र करेंगे। वह बिखिलाफ इन निकाही, और बखिलाफ निकाह के, ले अन अल बुज़ा फी हालति दुखूल मुतकविमुन, इसलिए क्योंकि बुज़ा जो है वो मिल्कियत के अंदर दाखिल होने की हालत में मुतकविमुन कीमत वाला है। वल्फिक्हु अन्नहु शरीफुन फलम युशरा तमल्लुकुहु इल्ला बिइवज़िन इज़हारन लिशरफिही। जी अब वो वजह जिक्र करने लगे हैं साहिब हिदाया के, बुज़ा दुखूल के वक्त यानी मिल्कियत में दाखिल होते वक्त मुतकविम क्यों होता है, और बुज़ा मिल्कियत से निकलते वक्त मुतकविम क्यों नहीं होता। तो अब वो वजह बयान करने लगे। वल फिक्ह, फिका कहते हैं फहमो फरासत को, यानी इसमें फहमो फरासत वाली गहरी बात यह है, अब आगे बयान करेंगे। वल फिक्ह अन्नहु शरीफुन, और इसमें फहमो फरासत वाली गहरी बात यह है कि अन्नहु शरीफुन, कि बुज़ा एक मुअज्जज चीज है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात करार दिया है, इंसान मुअज्जज है भाई, अल्लाह ने उसको मुअज्जज बनाया है। जब इंसान मुअज्जज है तो हर इंसानी उज्व मुअज्जज हुआ, और बुज़ा भी एक इंसानी उज्व है, लिहाजा वो भी मुअज्जज है। और मुअज्जज चीज का मालिक बगैर इवज के कोई नहीं हो सकता। शरीयत ने बतला दिया अंतब तगू भी अमवालिकुम के तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा, तुम इसके मुनाफे के मालिक बनना चाहते हो, नहीं भाई तुम मुफ्त में इसके मालिक नहीं बन सकते, यह मुअज्जज चीज है, तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा। तो मालूम हुआ बुज़ा मिल्कियत में जब दाखिल हो तो वह मुतकविम है, वो मुतकविम है। तो कहते हैं वल्फिक्ह अन्नहु शरीफुन, और इसमें फहमो फरासत वाली बात यह है कि बुज़ा जो है यह मुअज्जज है। फलम युशरा तमल्लुकुहु इल्ला बिइवज़िन, लिहाजा मशरू नहीं होगा यानी जायज नहीं होगा तमल्लुकुहु इसका मालिक बनना, इल्ला बिइवज़िन मगर इवज के साथ, इजहारन लिशरफिही इसके मुअज्जज होने के इजहार के लिए, ये मुअज्जज चीज है तुम वैसे इसके मालिक नहीं बन सकते, यानी वैसे ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा। तो इजहार अनली शरफी ही इसके मुअज्जज होने के इजहार के लिए। फअम्मल इस्कातु फनफ्सुहु शरीफुन, और बाकी मिल्कियत का साकित करना फनफ्सुहु शरीफुन, तो खुद उसकी जात ही मुअज्जज है भाई। जब बुज़ा मिल्कियत से निकल रहा है तो उस वक्त वो मुतकविम नहीं भाई। क्यों नहीं मुतकविम? कहते हैं इसलिए क्योंकि अपनी मिल्कियत का खत्म करना ये खुद ही एक मुअज्जज फेल है। अपनी मिल्कियत को किसी चीज से खत्म करना ये खुद ही एक मुअज्जज फेल है। इस फेल की वजह से बुज़ा पर मिल्कियत खत्म हो जाएगी, बुज़ा का शरफ फिर जाहिर हो जाएगा, बुज़ा का शरफ जाहिर होगा कि उसका कोई मालिक नहीं है। तो लिहाजा यहां इस्कात मिल्कियत है, और इस्कात मिल्कियत खुद ही मुअज्जज फेल है। जब यह खुद मुअज्जज फेल है तो यहां कोई इवज लाने की जरूरत नहीं कि जिससे पता चले यह मुअज्जज फेल है। जिससे पता चले ये मुआज्जज़ फेल है, ये तो खुद ही मुआज्जज़ है, तो इवज लाकर इसके एहसास को जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसकी वजह से बुज़ा जो है वो ममलूकियत से छुटकारा पा लेगा, वो बुज़ा जब मिल्कियत से निकलेगा अब वो खावंद का ममलूक नहीं। तो देखो ये खुद एक मुआज्जज़ अमल है, मिल्कियत को खत्म कर रहा है। तो कहते हैं फअमल इसकातुहू फनफ्सुहू शरीफुन, और बाकी मिल्कियत का साकित करना तो वो खुद अपनी जात के एतबार से मुआज्जज़ अमल है। फला हाजत इला ईजाबिल माली, तो लिहाजा कोई हाजत नहीं है माल को वाजिब करने की। قال وما جاز ان يكون مهرا جاز ان يكون بدلا في الخلع, साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा जाज अं यकून महरन, और जिस चीज का महर होना जायज है, जाज अं यकून बदलन फिल खुलई, तो उसका खुला में बदल होना भी जायज है। जो भी चीज हमारे नजदीक महर बन सकती है वो खुला के अंदर बदल भी बन सकती है, लेकिन इसका बरअक्स नहीं है कि जो भी चीज खुला के अंदर बदल बने वो महर बने, ऐसा नहीं है। मसलन खुला 5 दिरहम पर भी हो सकता है, लेकिन महर तो 10 दिरहम से काम नहीं हो सकता। तो जो महर बने वो खुला में बदल बन सकता है, लेकिन जो खुला में बदल बने उसका महर बनना जरूरी नहीं। तो कहते हैं लिअन नमायस लुहोई वजन लिल मुतकविमी औला अयस लुहली गैर मुतकविम दी, साहिब हिदाया की फसीह व बलीग इबारतें हैं, इंसान हैरान रहता है भाई कितने मुख्तसर लफ्जों में कितनी गहरी बातें वो करते चले जा रहे हैं। भाई देखो महर के वक्त बुज़ा मिल्कियत में दाखिल होगा और खुला के वक्त बुज़ा मिल्कियत से निकलेगा, और बुज़ा जब मिल्कियत में दाखिल हो तो वो मुतकविम होता है, वो मुतकविम होता है। मालूम हुआ महर इवज बन रहा है किस चीज का, मुतकविम चीज का इवज बन रहा है। महर किसका इवज बन रहा है, मुतकविम चीज का इवज बन रहा है, और खुला के अंदर बुज़ा मिल्कियत से निकल रहा है, और बुज़ा का मिल्कियत से निकलना तो मुतकविम नहीं है। तो वो जो महर जो इवज बना था मुतकविम का, वो खुला के अंदर गैर मुतकविम का इवज बतरीके औला बनेगा। भाई कहते हैं लिअन्नमा यसलुहु इवजन लिलमुतकविमी, इसलिए क्योंकि वो माल जो सलाहियत रखता है कि वो मुतकविम का इवज बन जाए, औला वो ज्यादा लायक है कि अन यसलुह लिगैरिल मुतकविमी, कि वो सलाहियत रखे कि इवज बन जाए गैर मुतकविम के लिए। फइन कालत लहू खालिअनी, सूरत मसला ये, बीवी ने यूं अपनी बंद मुट्ठी आगे की और खावंद से कहा कि जो कुछ मेरे हाथ में है उस पर मुझसे खुला कर लो, खावंद कहता है मैं राजी हूं, साथ ही तलाके बाइन हो गई। अब औरत ने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में कुछ भी नहीं था, मुट्ठी में कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं इस सूरत में याद रखो औरत को तलाके बाइन हो गई, वो जुदा हो गई, और नीज औरत पर कोई माल भी लाजिम नहीं। भाई माल कैसे नहीं लाजिम, औरत ने मुट्ठी आगे की थी तो उस पर माल होना चाहिए। कहते हैं नहीं, औरत ने कोई माल का लफ्ज जिक्र किया, उसने तो कहा था जो मुट्ठी में है उसके अइवस। औरत ने अगर माल जिक्र किया होता फिर धोखा था, जब माल जिक्र नहीं किया तो धोखा नहीं है भाई, क्योंकि बच्चा भी जानता है कि हो सकता है मुट्ठी में कोई चीज हो सकता है कोई चीज ना हो भाई। तो कहते हैं फइन कालत लहू, अगर बीवी ने खावंद से कहा खालिअनी अला माफी यदी, कि तू मुझसे खुला कर ले उस चीज पर जो मेरे हाथ में है, फखालअहा, तो खावंद ने उसे खुला कर लिया, वलम यकुन फी यदिहा शयउन, और उस औरत के हाथ में कुछ भी नहीं था, फला शयअ अलैहा, तो कोई चीज औरत पर लाजिम नहीं और तलाक भी वाकई हो जाएगी। लिअन्नहा लम तगुर्रहु बितस्मियतिल माली, इसलिए क्योंकि औरत ने खावंद को धोखा नहीं दिया बितस्मियतिल माली माल जिक्र करके। व इन कालत, और अगर बीवी ने कहा खालिअनी अला माफी यदि मिम मालिन, अब दूसरी सूरत, औरत ने बंद मुट्ठी आगे की और कहा कि मेरे हाथ में जो माल है उसके इवज मुझसे खुला कर लो। अब देखो उसने बाकायदा माल का लफ्ज जिक्र किया है, तो हां इस सूरत में उसने माल का लफ्ज जिक्र किया है और मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है, मालूम हुआ ये इसने धोखा दिया है, तो अब इस सूरत में माल आएगा भाई। तो कहते हैं वह इन कालत, और अगर बीवी ने कहा खाल यानी अला माफी यदि मिम मालिन कि तू मुझसे खुला कर ले उस माल पर जो मेरे हाथ में है, फखाला खावन ने उससे खुला कर लिया, फलम यकुन फी यदिहा शय उन तो उस औरत के हाथ में कोई चीज नहीं थी, रद्दत अलैहि महरहा तो औरत अपना महर अब इसको वापस करेगी। औरत पर इवज तो जरूर आएगा, अब क्या इवज आएगा, कहते हैं यहां और कोई चीज लाजिम नहीं की जा सकती, बस यही कहेंगे फिर कि जो खावंद ने माल इसको दिया था वही माल क्या कर दे, वापस कर दे। तो कहते हैं रद्दत अलैहि महरहा तो औरत लौटा देगी खावंद पर अपने महर को, लिअन्नहा लम्मा सम्मत मालन लम यकुनी ज़ौजु राज़ियन बिज़वाली इल्ला बिइवज़िन, लिअन्नहा लम्मा सम्मत मालन इसलिए क्योंकि औरत ने जब माल जिक्र कर दिया, लम यकुनी ज़ौजु राज़ियन तो खावंद राजी नहीं है, बिज़वाली ज़वाल पर, इल्ला बिइवज़िन मगर इवज के साथ, लम यकुनी ज़ौजु राजियन बिज़वाल इल्ला बिइवज़िन तो खावन जो है उस मिल्कियत के जवाल पर राजी नहीं है, इल्ला बिइवज़िन मगर इवज के साथ, वला वजह इला इजाबिल मुसम्मा वकीमती ही लिल जहालती और कोई सूरत नहीं है मुसम्मा के वाजिब करने की या उसकी कीमत के वाजिब करने की, लिल जहालती मजहूल होने की वजह से, वो चीज जो उसने जिक्र की है उसके वाजिब करने की सूरत नहीं है क्योंकि उसने तो माल कहा था मेरे हाथ में जो माल है और वो माल तो मजहूल है भाई, जब माल मजहूल है तो उसकी कीमत भी क्या हो गई, मजहूल हो गई, लिहाजा वो तो हम वाजिब कर नहीं सकते। तो कहते हैं वला वजह इला इजाबिल मुसम्मा वकीमती ही लिल जहालती और कोई सूरत नहीं है उस मुसम्मा यानी वो जिस चीज को जिक्र किया था और उसकी कीमत के वाजिब करने की, लिल जहालती मजहूल होने की वजह से, वला इला कीमतिल बुज़ई आनी महरल मिसली लिअन्नहु गैरु मुतकव्विमिन हालतल खुरूज। देखिए भाई साहिब हिदायत की इबारात, इंसान हैरान रहता है भाई, कहते हैं वो जो औरत ने जिक्र किया है वो भी हम वाजिब नहीं कर सकते और बुज़ा की जो कीमत है, बुज़ा की कीमत क्या होती है, महरे मिसल उस जैसी औरतों का जो महर होता है, तो महरे मिसल को भी हम वाजिब नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं वाजिब कर सकते, कहते हैं इसलिए क्योंकि इस वक्त बुज़ा मिल्कियत से निकल रहा है और मिल्कियत से निकलते वक्त बुज़ा की कोई कीमत नहीं होती, मिल्कियत में दाखिल होते वक्त तो कीमत होती है, खारिज होते वक्त कीमत नहीं, लिहाजा हम वो बुज़ा की कीमत यानी महरे मिसल भी वाजिब नहीं कर सकते। तो जब उसकी भी कोई सूरत नहीं है तो फिर मजबूरन वही माल वाजिब करेंगे जो खावंद ने इसको दिया था, यानी वही माल वापस कर दो खावंद को, यानी जितने में खावंद को पड़ी थी वही औरत पर वाजिब कर दिया जाएगा। तो कहते हैं वला इला कीमतिल बुज़ई और बुज़ा की कीमत वाजिब करने की भी कोई सूरत नहीं है, आनी महरल मिसली यानी महर मिसल को, लिअन्नहु गैरु मुतकव्विमिन हालतल खुरूजी इसलिए क्योंकि बुज़ा कीमत वाला नहीं होता खुरूज की हालत में, फतअय्यन ईजाब मकाम बिही अलज़ ज़ौजी तो मुतय्यन हो गया वाजिब करना, मकाम बिही अलज़ ज़ौजी जितने में ये खावंद को पड़ी थी, जितने माल के अंदर ये खावंद को पड़ी थी यानी जो खावंद ने महर दिया था, दफअन लिज़ररी अनहु खावंद से नुकसान को दूर करने के लिए, खावंद से नुकसान को दूर करने के लिए ताकि उसका नुकसान खत्म हो जाए क्योंकि वो बगैर इवज के मिल्कियत खत्म करने पर राजी नहीं है भाई। वलौ कालत खाले अनि अला माफी यदि मीन दराहिमा औ मीना दराहिम, सूरत मसला ये, अब औरत ने उसी तरह बंद मुट्ठी आगे की और खावंद से कहा कि खाले अनि अला माफी यदि मीन दराहिमा कि तू मुझसे खुला कर ले वो जो मेरे हाथ में है, मीन दराहिमा यानी कि दिरहम, मीन दराहिमा चाहे बगैर अलिफ लाम के साथ जिक्र करे या अलिफ लाम के साथ जिक्र करे, मीना दराहिम दोनों का एक ही हुक्म है कि तुम मुझसे खुला कर ले वो जो मेरे हाथ में है, मीन दराहिमा यानी कि दिरहम, जो दिरहम मेरे हाथ में है, बस यूं आसान लफ्जों में यूं कहो जो दिरहम मेरे हाथ में है उन पर मुझसे खुला कर लो, दराहिम जिक्र कर दिए चाहे अलिफ लाम के साथ जिक्र करे चाहे बगैर अलिफ लाम के, और फिर जब उसने मुट्ठी खोली तो हाथ में कुछ भी नहीं था, तो कहते हैं फिर इस सूरत में उसने दराहिम जिक्र किए हैं और दराहिम जमा का सीगा है और जमा का इतलाक कम अज कम तीन अफराद पर होता है तो लिहाजा तीन दिरहम वाजिब हो जाएंगे। कहते हैं वलव कालत खाले यानी अला माफी यदि मीन दराहिमा, और अगर औरत ने कहा कि मुझसे खुला कर लो, अला माफी यदि उस चीज पर जो मेरे हाथ में है, मीन दराहिमा यानी कि दिरहम, देखो बगैर अलिफ्लाम के कहा, औ मीनत दराहिमी ये अलिफ्लाम के साथ कहा, दोनों का एक ही हुक्म है। फाफा आला खावन ने कर दिया यानी उसने कहा मुझे मंजूर है, फलम यकुन फी ये दिहा शे उन, तो लिहाजा फलम यकुन फी ये दिहा शे उन, तो औरत के हाथ में कुछ भी नहीं था। फाले हा सला सतु दराहिमा, तो इस औरत पर तीन दिरहम लाजिम होंगे। लिअन्नहा सम्मतिल जमा, इसलिए क्योंकि औरत ने जमा को जिक्र किया, दराहिम क्या है जमा का लफ्ज है, तो औरत ने जमा को जिक्र किया। वह अकल लुहू सलासतुन, और जमा की कम से कम मिकदार जो है वो तीन है। वह कलिमतु मिन हा हुना लिस्सिलति दून तबईस, भाई याद रखो यहां जो मिन आया, खालिअनी अला माफी यदि मिन दराहिमा, ये जो मिन है ये बात पहले भी गुजर चुकी कि ये मिन तबईज के लिए आता है और इसी तरह यह मीन कभी बयान के लिए आता है, और दोनों में फर्क यह बयान फरमाते हैं कि मीन तब के मीन जो है मीन को बयान के लिए बनाएंगे, अगर उस मीन को हटाने से कलाम खराब हो जाए, अगर मीन को इबारत से निकाल दें और कलाम खराब हो जाए तो समझ जाए यह मीन बयान वाला है, और अगर मीन को हटाने के बावजूद कलाम दुरुस्त रहे तो मालूम हुआ यह मीन तबईज वाला है। जैसे देखो अखस्तु मीना दराहिमी, मैंने दिरहमों में से कुछ ले लिए, मैंने दिरहमों में से कुछ ले लिए। अखस्तु मीना दराहिमी, जरा मीन को हटा दो, अखस्तु दराहिमा, अब भी कलाम ठीक है, मैंने वो दिरहम ले लिए, तो मालूम हुआ जब मीन का हटाना सही हो तो मालूम हुआ वो मीन तबईज वाला है। और याद रखो उलमाए नहव फरमाते हैं कि वो मीन जो तबईज के लिए आता है वो इसम होता है, वो इसम होता है, और मीन तो जर देता है, लेकिन ये तो इसम है तो ये मुजाफ बनेगा, और अगला लफ्ज क्या बनेगा, मुजाफिल है भाई, तो जब ये इसम है तो ये मुबतदा भी बन सकता है भाई। तो अगर मीन को हटाया जाए और इबारत में कोई खलल वाकई ना हो तो मालूम हो यह मीन तबईजिया है, और अगर मीन के हटाने से इबारत खराब हो तो मालूम हुआ यह मीन बयान के लिए है। और यहां पर भी ऐसा है, खालिअनी अला माफी यदि मीन दराहिमा, जरा मीन को हटा दें, खालिअनी अला माफी यदि दराहिमा, कलाम ही खराब हो गया सारा। तो कहते हैं वह कलिमतु मिन हा हुना लिस्सिलति दून तबईस, सिला सौद के साथ, यहां सिला से मुराद है बयान भाई, जिसको उलमाए नहव क्या फरमाते हैं, बयान कहते हैं कि मिन बयान के लिए आता है, उसी को साहिब हिदाया क्या फरमा रहे हैं, सिला फरमा रहे हैं। कहते हैं वह कलिमतु मिन हा हुना लिस्सिलति दून तबईसी, और कलिमा मिन यहां पर बयान के लिए है न कि तबईस के लिए। लिअन्न अल कलाम यख्तल्लु बिदूनी ही, इसलिए क्योंकि इसके बगैर कलाम जो है वो मुख्तल हो जाता है, उस कलाम के अंदर खलल आ जाता है, कलाम खराब हो जाता है अगर इस मीन को आप हटा दें। वइन इख्तलअत अला अब्दिन लहा आबिकिन अला अन्नहा बरीअतुम मिन ज़मानिही, सूरत मसला ये कि एक औरत है उसका गुलाम भाग गया है, वो अब अपने खामन से खुला करती है और कहती है कि खुला के अंदर मैं तुम्हें वो वाला गुलाम दूंगी, अगर वो गुलाम मुझे मिल गया तो वो तुम्हारा होगा, और अगर वो न मिला मुझे तो फिर मैं जमान से बरी हूं, मेरे ऊपर जमान नहीं आएगा। खावन कहते हैं मुझे मंजूर है, तो कहते हैं याद रखो इस सूरत में खुला हो गया लेकिन औरत जमान से बरी नहीं होगी, अगर गुलाम मिल गया तो वही गुलाम देना पड़ेगा, और अगर गुलाम नहीं मिलता तो फिर उसकी कीमत देना पड़ेगी भाई। वजह यह कि यह अक़्द मुआवजा है, यह खुला क्या है, अक़्द मुआवजा है, और अक़्द मुआवजा के अंदर जमान से बरी होने की शर्त नहीं लगाई जा सकती, तो ये खुला ये अक़्द मुआवजा है भाई, और अक़्द मुआवजा के अंदर जमान से बरी होने की शर्त लगाना सही नहीं, ये शर्त बातिल है भाई, जमान आएगा। तो कहते हैं वह इन इख्तलअत अला अब्दिन लहा आबिकिन, और अगर खुला किया औरत ने अला अब्दिन ऐसे गुलाम पर, लहा जो इस औरत का है, आबिकिन भागा हुआ है, आब्द मौसूफ है, लहा सिफत अव्वल है, याद रखो नकिरा के बाद जार मजरूर आए तो वो अमूमन उसके लिए सिफत बनता है और बराह रास्त सिफत नहीं बनेगा बल्कि मुतअल्लक पहले निकालेंगे। आबदीन साबितिन लहा, ऐसा गुलाम जो इस औरत के लिए साबित है यानी जो इस औरत का है, और आबिकिन जो भागा हुआ है। तो कहते हैं वही निख्तलात अला आबदीन लहा आबिकिन, और अगर औरत ने खुला कर लिया अपने ऐसे गुलाम पर जो भागा हुआ है, अला अन्नहा बरी अतुम मिन जमानी ही, इस शर्त पर कि यह औरत उसके जमान से बरी है, लम तबरा तो ये बरी नहीं होगी, वालैहा तस्लीम आईनी ही इन कदरत, और इस औरत पर आईन इसी गुलाम को सुपुर्द करना होगा, इन कदरत अगर वो इस पर कादिर हुई, व तस्लीम कीमती ही इन आजाजत, और इसकी कीमत का सुपुर्द करना होगा, इन आजाजत अगर गुलाम देने से ये आजिज आ गई, लिअन्नहु अक्दुल मुआवजती, इसलिए क्योंकि खुला जो है वो अक्द मुआवजा है, फयक्तजी सलामत अलईवजी, तो ये तकाजा करता है ईवज की सलामती का, कि ईवज सलामत रहे, दूसरे को पूरा ईवज दिया जाए, वश्तेरातुल बराअति अनहु शर्तुन फासिदुन, और ईवज से बरी होने की शर्त जो है ये शर्त फासिद है, फयबतुलु तो ये शर्त बातिल होगी, इल्ला अन्नल खुला ला यबतुलु बिशुरूतिल फासिदती, मगर ये कि खुला जो है वो शुरूत फासिदा से बातिल नहीं होता, वह अला हादन निकाह, और इसी पर निकाह भी है यानी वो भी शुरूत फासिदा से फासिद नहीं होता, बै और इजारा वगैरह शुरूत फासिदा से फासिद हो जाते हैं लेकिन खुला और निकाह शुरूत फासिदा से फासिद नहीं होते। आगे देखिए, वह इदा कालत तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन फतल्लका वाहिदतन फालैहा सुलुसुल अल्फी, भाई सूरत मसला ये कि बीवी ने खावन से कहा तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन कि तू मुझे तीन तलाकें दे दे, बी अल्फिन हजार के बदले, हजार के बदले, याद रखो ये जो बा है ये ईवज पर दाखिल होती है, ईवज पर बै भी आप करते हैं, इश्तरैतुल किताबा बी मिअति रुबियतिन, मैंने वो किताब खरीदी सौ रुपए के बदले में, तो देखो ये बा किस पर दाखिल होती है, समन पर, तो ये ईवज पर दाखिल होती है भाई। तो बीवी ने बा का लफ्ज इस्तेमाल किया, तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन के तू मुझे तीन तलाकें दे दे एक हजार के बदले, खावंद ने एक तलाक दी सिर्फ, बीवी ने मुतालबा कितना किया तीन का हजार के बदले, खावंद ने एक तलाक दे दी, तो कहते हैं इस सूरत में तीन तलाकों के बदले हजार था तो एक तलाक के बदले हजार का तीसरा हिस्सा आएगा, तो बीवी पर तीसरा हिस्सा माल लाजिम हो जाएगा और एक तलाक हो जाएगी, और तलाक भी बाइन होगी, भाई बाइन क्यों होगी, भाई ये बात पहले गुजर चुकी कि औरत इवज दे रही है और औरत तभी इवज देने पर राजी होगी जब उसकी जान छूट रही हो, अगर जान नहीं छूट रही तो फिर तो वो इवज देने पर भी राजी नहीं होगी, लिहाजा यहां एक ही तलाक के अंदर औरत जुदा हो गई और उसके जिम्मे हजार का तीसरा हिस्सा आया, पूरा हजार आप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो औरत जब हजार दिरहम में जान छुड़ाने पर राजी है तो उस हजार के तीसरे हिस्से में बतरीके औला वो राजी होगी भाई। कहते हैं वह ईदा कालत, और जब बीवी ने कहा तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन के तू मुझे तीन तलाकें दे दे हजार के बदले, फतल्लका वाहिदतन तो खावन ने उसको एक तलाक दे दी, फालैहा सुलुसुल अल्फी तो इस औरत पर हजार का तीसरा हिस्सा है, लिअन्नहा लम्मा तलबतिस सलासा बी अल्फिन, इसलिए क्योंकि जब औरत ने हजार के बदले तीन तलाकें तलब की हैं, फकत तलबत कुल वाहिदतिन बी सुलुसिल अल्फी तो तहकीक उसने हर एक तलाक को हजार के तीसरे हिस्से के बदले तलब किया है, जब तीन को हजार के बदले तलब कर रही है मालूम हुआ हर तलाक को वो हजार के तीसरे हिस्से के इवज तलब कर रही है, वहां दाली अन्न हर्फ अलबाई तसहबुल आवाजा, और ये इसलिए क्योंकि हर्फ बा जो है तसहबुल आवाजा ये साथ होता है इवजों के, ये इवजों पर दाखिल होता है, लिअन्ना हरफल बा तस्हबुल आवाजा, इसलिए क्योंकि हरफ बा जो है ईवज के साथ आता है, वल ईवजु यन कसीमु अलल मुअव्वजी, और ईवज जो है वो तकसीम होता है मुअव्वज पर, याद रखो मुअव्वज़ तकसीम होगा तो इवज़ भी तकसीम होगा, लेकिन अगर शर्त में तकसीम आए तो मशरूत तकसीम नहीं होगा। मुअव्वज़ में तकसीम आएगी तो इवज़ में भी तकसीम आएगी। मसलन आपको मैंने कहा ये पांच किताबें 10,000 रुपए की हैं, जब पांच किताबें 10,000 की हैं मालूम हुआ अगर एक किताब लेंगे तो वो 2,000 की होगी। तो देखो मुअव्वज़ में तकसीम आ रही है तो इवज़ में भी तकसीम आएगी, लेकिन शर्त में तकसीम आए तो मशरूत में तकसीम नहीं आएगी। आपने अपने साथी से कहा अगर आपने ये 20 रोटियां खा ली तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, वो उठा और उसने 2 रोटियां खा ली और कहता है भाई 20 के बदले 20,000 थे तो 2 के बदले 2,000 हुए, लाओ भाई 2,000 दे दो। आप कहेंगे नहीं भाई 20 पूरी खाओगे तो फिर ही पूरे पैसे मिलेंगे, शर्त में तकसीम की वजह से मशरूत में तकसीम नहीं आती भाई। तो कहते हैं वलई वजू यन कसीम अलल मुअव्वज़ी, और इवज़ जो है वो तकसीम होता है मुअव्वज़ पर। व तलाक बाइन ली वजूब इल माली, और ये जो तलाक वाके हुई है ये तलाक बाइन होगी ली वजूब इल माली, क्योंकि औरत पर माल वाजिब हुआ है और माल वो औरत तलाक बाइन के इवज़ में देती है, तलाक रजई के इवज़ में नहीं। व इन काला तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन फतल्लकहा वाहिदतन, अब वही अल्फाज हैं वही सूरत है, सिर्फ बा की जगह औरत ने अला का लफ्ज जिक्र कर दिया। पहले कहा था तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन, अब कहती है तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन। तो इस सूरत के अंदर बीवी ने अला के साथ तीन तलाकों का मुतालबा किया और खावन ने एक तलाक दे दी, तो साहिबैन फरमाते हैं यहां भी उसी तरह होगा, औरत बाइना हो गई और सुलू से अल्फ उसको देना पड़ेगा। वो फरमाते हैं ये आला भी बा के माना में ही है, ये आला भी बा के माना में है, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं आला शर्त के लिए आता है, आला शर्त के लिए आता है, लिहाजा और शर्त में तकसीम आए तो मशरूत में तकसीम नहीं आती, लिहाजा यहां एक तलाक खावन देगा तो इस सूरत में तलाक रजई होगी और बीवी पर कोई माल नहीं आएगा, तलाक रजई होगी और बीवी पर कुछ भी नहीं आएगा। तलाक रजई क्यों? क्योंकि इवज़ नहीं आ रहा और सरीह लफ्ज़ जिक्र किया था, क्योंकि खावन ने सरीह लफ्ज़ से तलाक दी है, एक तलाक दी है और सरीह से तलाक रजई होती है और इवज़ नहीं आया मुकाबले में, इवज़ आता तो फिर हम इसको तलाक बाइन करार देते भाई। तो कहते हैं वह इन कालत, और अगर औरत ने कहा तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन के आप मुझे तीन तलाकें दे दें 1,000 की शर्त पर, फतल्लकहा वाहिदतन तो खावन ने उसको एक तलाक दे दी, फला शैअ अलैहा इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो इस औरत पर कुछ भी नहीं है इमाम साहिब के नजदीक, एक तलाक हो जाएगी लेकिन वो भी रजई होगी और औरत पर कोई माल लाजिम नहीं। वयमलिकु रजअता, और खावन जो है रुजू का मालिक है। वकाला ही वाहिदतुन बाइनतुन बिसुलुसिल अल्फी, साहिबैन फरमाते हैं कि ये भी एक बाइना तलाक होगी और 1,000 के तीसरे हिस्से के बदले होगी। तो कहते हैं वकाला, साहिबैन फरमाते हैं ही वाहिदतुन बाइनतुन, ये एक ही बाइना तलाक होगी, बिसुलुसिल अल्फी 1,000 के तीसरे हिस्से के बदले में, लिअन्न कलिमत अला बिमंजिलतिल बाई फिल मुआवजाती, साहिबैन फरमाते हैं इसलिए क्योंकि कलिमा अला जो है जब मुआवजात में जिक्र किया जाए तो ये बा के दर्जे में होता है। हत्ता इन कौलहुम, यहां तक कि अरबों का ये जो कौल है इहमिल हादत तआम बिदिरहमिन औ अला दिरहमिन सवाउन, साहिबैन अरबों का कौल जिक्र फरमा रहे हैं कि अरब कहते हैं किसी से कहते हैं इहमिल हादत ताम, ताम याद रखो ताम गल्ले को कहते हैं, किसी शख्स से कोई दूसरा शख्स कहता है इहमिल हादत ताम ये गल्ला उठाओ बि दिरहमिन, कितने के बदले में? एक दिरहम के बदले में। मालूम हुआ वो उससे अक्द इजारा कर रहा है कि ये गल्ला यहां से उठाकर वहां तक ले जाओ, कितने के बदले में? एक दिरहम के बदले में। तो साहिबैन फरमाते हैं अगर बि दिरहमिन के बजाय अला दिरहमिन कहेगा तो भी यहां अला बा के माना में है। मालूम हुआ मुआवजात के अंदर जब अला जिक्र हो तो वो किस माना में होता है? बा के माना में होता है, वो शर्त के लिए नहीं होता भाई। तो कहते हैं हता इन कौलहुम, यहां तक कि अरबों का कौल जो है इहमिल हादत तआमा बिदिरहमिन, तो ये कहे इहमिल हादा ताम अबी दिरहमीन औ अला दिरहमीन, यानी यूं कहे इहमिल हादा तामा अला दिरहमीन, ये दोनों जो हैं सवा उन बराबर हैं। वलहू, और इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्न कलिमत अला लिशर्ती, के कलिमा अला शर्त के लिए होता है। قال الله تعالى कुरान में अल्लाह फरमाते हैं युबायअनका अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाही शैआ, ये औरतें आपकी बैअत करती हैं ऐ पैगंबर, ये मुसलमान औरतें आपकी बैअत करती हैं अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाही शैआ, इस शर्त पर कि ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। तो देखो यहां अला किस लिए आया, शर्त के लिए। तो कुरान से इमाम साहेब दलील जिक्र फरमा रहे हैं कि यह आला शर्त के लिए आता है, जैसे इस आयत में यह आला किस लिए है, शर्त के लिए है कि युबा ये अन्ना का आला अल्लाह यू शरीक न बिल्लाही शैआ, कि औरतें आपकी बैअत करती हैं इस शर्त पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। वमन काल लिमरअती ही, अब कलाम अरब से भी दलील पेश फरमा रहे हैं इमाम साहेब, कहते हैं वमन काल लिमरअती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंत तालिकुन अला अंत दुखुली दारा कान शर्तन, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहे अंत तालिकुन तुझे तलाक है अला इस शर्त पर अंत दुखुली कि तू दाखिल हो जाए अदारा उस घर में, तो अरबों के हां अगर इस तरह का कोई कलाम करे तो उसको सब लोग शर्त पर महमूल करते हैं और तलाक वैसे नहीं होगी, जब उस घर में औरत जाएगी तभी तलाक होगी। खामन ने क्या कहा है अंत तालिकुन अला अंत तदखुली अदारा, देखो तदखुली ये इस पर अन दाखिल हुआ, असल में था तदखुलीना, यदखुलू यदखुलानी यदखुलूना तदखुलू तदखुलानी यदखुलना तदखुलू तदखुलानी तदखुलूना तदखुलीना, तो ये तदखुलीना सीगा है, अन दाखिल हुआ और नून गिर गया आखिर से, नून एराबी भाई, ये नून एराबी नसब की हालत में भी गिर जाता है और जजम की हालत में भी गिर जाता है। तो खावन बीवी से कहता है अंत तालिकुन अला अंत तदखुली दारा के तुझे तलाक है इस शर्त पर कि तू उस घर में दाखिल हो, कान शर्तन तो ये शर्त होगी, वहाद अली अन्नहु लिलुजूम मिन हकीकतन, और ये इसलिए क्योंकि कलिमा अला जो है लिलुजूम मिन, ये लुजूम के लिए होता है हकीकतन बाएतबार हकीकत के, कलिमा अला किस लिए आता है लुजूम के लिए, ये इसका हकीकी माना है। चुनांचे अगर कोई शख्स कहे लिफुलान इन अलैया अल्फ दिरहमिन, तो देखो उस पर वो हजार दिरहम लाजिम हो जाते हैं, क्योंकि अला किस लिए आता है लुजूम के लिए। तो इमाम साहब फरमाते हैं वहाद अली अन्नहु लिलुजूम इन हकीकतन, क्योंकि हर्फ अला जो है ये लुजूम के लिए होता है हकीकत के एतबार से, वस्तुईर अली शर्ती, और इसको आरियतन ले लिया गया शर्त के लिए, यानी मजाजन इसको शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिअन्नहु युलाजिमुल जजा, क्योंकि शर्त जो है जजा के साथ लाजिम होती है, शर्त जजा के साथ लाजिम होती है। व इदाकान अली शर्ती, और जब यह अला शर्त के लिए है, जब ये अला किस लिए है, शर्त के लिए, और औरत ने क्या कहा है तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन, तो ये अला शर्त के लिए हुआ। व इदा कान अली शर्ती, और जब ये अला शर्त के लिए है, फल मशरूत ला युतवज़ा अला अज्ज़ा इस शर्ती, तो जो मशरूत होता है ला युतवज़ा उसको तकसीम नहीं किया जाता, अला अज्ज़ा इस शर्ती शर्त के अज्ज़ा पर, मशरूत जो है उसको शर्त के अज्जा पर तकसीम नहीं किया जाता, मुअव्वज में तकसीम आए तो इवज को तकसीम करते हैं, लेकिन शर्त में तकसीम आए तो मशरूत को तकसीम नहीं करते, यही बयान कर रहे हैं। फल मशरूत ला युतवज़ा अला अज्जा इस शर्ती, तो मशरूत जो है वो तकसीम नहीं होता शर्त के अज्जा पर, बिखिलाफ अलबा बखिलाफ बा के, लिअन्नहु लिलइवज़ अला मा मर्रा, इसलिए क्योंकि बा इवज के लिए होती है, उस वजह से जो बात गुजर गई कि बा जो है इवज पर दाखिल होती है, पीछे आया था लि अन्न हर्फ अल बा तसहबुल आवाज़ा, तो कहते हैं लि अन्नहु लिल इवज़ अला मा मर्रा, इसलिए क्योंकि बा जो है इवज के लिए होती है, उस वजह से जो गुजर गई। व इदा लम यजिबिल मालू, और जब खावन पर माल वाजिब नहीं है इस सूरत में, एक तलाक दी है, तो कान मुबतदी अन, तो खावन जो है वो मुबतदी हुआ, यानी एक नई बात करने वाला है। बीवी ने तो क्या कहा तल्लिकनी सलासन अला अल्फिन, और खावन जवाब में कहता है अंति तालिकुन, सिर्फ एक तलाक देता है, तो यूं कहेंगे खावन बीवी का जवाब दे ही नहीं रहा। बीवी ने तो तीन तलाकों का मुतालबा किया है, एक का मुतालबा नहीं किया, लेकिन खावन एक दे रहा है और खावन पर माल भी नहीं आ रहा, मालूम है खावन एक नई बात कर रहा है, अलग बात, ये बीवी का जवाब नहीं दे रहा। और अलग खावन बीवी से अंति तालिकुन कहे तो वहां तलाके रजई होती है। तो कहते हैं वह इदा लम यजिबिल मालुकान मुबतदी अन, और जब खावन पर माल वाजिब नहीं तो खावन जो है मुबतदी है, यानी नई बात करने वाला है, तो खावन एक चीज की इब्तिदा करने वाला है, यानी एक नई बात करने वाला है, फवकात तलाक, तो तलाक वाके हो जाएगी, व यमलिकुर रजाता, और खावन रुजू का मालिक होगा। तो इमाम साहब के नजदीक देखो ये जो अला है ये शर्त के लिए आता है, और जो साहिबैन ने मिसाल जिक्र की थी इहमिल हादा ताम अभी दिरहमिन कि ये कह ले या आला दिरहमिन कह लें, दोनों का एक ही बाना है, तो उसका भी जवाब देते हैं उलमा कि वहां पर अकदे इजारा जिक्र हो रहा है, अकदे इजारा और अकदे बै और अकदे इजारा ये तो तालीक का इहतमाल नहीं रखते। तलाक तो मुअल्लक की जा सकती है लेकिन इजारे या बेअ को मुअल्लक नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से वहां पर कहा इहमिल हादा ताआमा अला दिरहमिन, आया तो अला है, अला तो शर्त के लिए होता है, लेकिन यह तो इजारा है और इजारे में तो तालीक नहीं हो सकती, तो मजबूरन फिर इसको बा के माना पर महमूल करना पड़ा। भाई बात समझ में आ गई, वरना अला किस लिए आता है, शर्त ही के लिए आता है, लेकिन यहां एक माने आ गया, हम उसको शर्त पर महमूल नहीं कर सकते क्योंकि इजारे की बात चल रही है। बात समझ में आ गई। वलव काला जौजु तल्लिकी नफ्सा की सलासन भी अल्फिन औ अला अल्फिन, और अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सा की सलासन भी अल्फिन औ अला अल्फिन, खावन बीवी से कहता है तल्लिकी नफ्सा की सलासन भी अल्फिन, तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे हजार के बदले में, यहां चाहे खावन बा लेकर आए चाहे अला, दोनों का एक ही हुक्म है, चाहे खावन यूं कहे तल्लिकी नफ्सा की सलासन अला अल्फिन कि तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे हजार के बदले, तो चाहे खावन बा लेकर आए चाहे अला, इस सूरत के अंदर अगर औरत अपने आप को एक तलाक देगी तो कुछ भी वाक़े नहीं होगा, एक तलाक भी नहीं होगी, एक तलाक भी वाक़े नहीं होगी। भाई क्यों, यहां जब बा जिक्र कर रहा है बा तो इवज पर दाखिल होती है और मुअव्वज में तकसीम हो तो इवज में भी तकसीम होती है, तो यहां भी तकसीम होनी चाहिए, एक तलाक की वजह से बीवी पर सुलू से अल्फ आना चाहिए और तलाके बाइन होनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं एक भी नहीं होगी। कहते हैं वजह यह कि फर्क है, पिछले मसले में औरत ने मुतालबा किया था, और याद रखो इस मसले में औरत मुश्तरी के दर्जे में है और खावन बाएं के दर्जे में है, जो एक चीज बेच रहा है और औरत एक चीज खरीद रही है, तो औरत अपनी जात को खावन से खरीद रही है, तवज्जो है, तो लिहाजा जब बाए कोई चीज बेचता है और उसका समन जिक्र कर देता है ये पांच किताबें मैंने आपको 20,000 में बेच दी, तो बाए समन से कम पर राजी नहीं होगा, बाए क्या कहेगा, पूरा समन दो पूरी चीज ले लो। भाई मसलन एक आदमी दूसरे से कहता है ये पांच किताबें 20,000 की हैं, वो कहता है अच्छा 5-20 की हैं तो चलो मुझे एक किताब दे दो और ये लो 4,000 रुपए, क्या वो कहेगा नहीं मैंने तो पांच का ईजाब किया है, तो कबूल भी किसको करना पड़ेगा, पांच को करना पड़ेगा, वो एक के लिए अलग ईजाब और कबूल चाहिए। तो जो चीज बेचने वाला होता है यानी यूं कहो जो पैसों को वसूल करने वाला होता है वो पूरा समन ही चाहता है, जबकि जो पैसे अदा करने वाला है वो पूरे पैसे नहीं देना चाहता, वो पूरे पैसे देगा पूरी चीज ले लेगा, लेकिन अगर कम पैसों में भी वो चीज मिलेगी वो उसको ले लेगा। जैसे पिछले मसले में औरत ने कहा था कि मुझे तीन तलाकें दे दो हजार के बदले, तो जब वो हजार के अंदर अपनी जान छुड़ाने पर राजी है तो एक तलाक के अंदर भी उसकी जान छूट गई और कितने पैसे आए, हजार का तीसरा हिस्सा। तो जब वो हजार में जान छूटने पर राजी थी तो हजार के तीसरे हिस्से में जान छूटने पर बतरीके औला राजी होगी। लेकिन खावंद अगर यूं कहेगा तो फिर मसला इस तरह नहीं है, फिर पूरे ही इवज देना पड़ेगा, वहां इवज पर मुआवज की तकसीम नहीं होगी। तो कहते हैं वलौ काला ज़ौजु, और अगर खावंद ने कहा तल्लिकी नफ्स की सलासन बी अल्फिन, कि तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे बी अल्फिन हजार के बदले में, औ अला अल्फिन या हजार की शर्त पर, चाहे बा को जिक्र किया खावंद ने चाहे अला को, फतल्लकत नफ्सहा वाहिदतन, तो औरत ने अपने आप को एक तलाक दे दी, लम यका शय उन, तो कुछ भी वाकई नहीं होगा, एक तलाक भी वाकई नहीं होगी, लिअन्न ज़ौजा मा रज़िया बिल बैनूनति इल्ला लियस्लम अल अल्फ कुल्लुहा, इसलिए क्योंकि खावंद राजी नहीं है बिल बैनूनति जुदाई पर, इल्ला लियस्लम अल अल्फ कुल्लुहा, मगर यह कि पूरा हजार उसके लिए सलामत रहे, पूरा हजार उसको मिल जाए, फिर ही वो जुदाई पर राजी है, वैसे वो राजी नहीं। बिखिलाफी कौलिहा, बखिलाफ औरत के कौल के जो पिछले मसले में आया था, बिखिलाफी कौलिहा तल्लिकनी सलासन बी अल्फिन, कि तू मुझे तीन तलाकें दे दे हजार के बदले में, लिअन्नहा लम्मा रज़ियत बिल बैनूनति बी अल्फिन, इसलिए क्योंकि जब औरत हजार के बदले जुदाई पर राजी है, कानत बी बाज़िहा अरज़ा, तो वह हजार के बास पर ज्यादा राजी होगी, तो कानत भी बाजीहा अर्जा, तो वह हजार के बास पर ज्यादा राजी होगी। वलौ काल अंति तालिकुन अला अल्फिन फकबिलत तुल्लिकत वअलैहल अल्फु वहुवा का कौलिही अंति तालिकुम बी अल्फिन, पिछले मसले में था खावन ने बीवी को इख्तियार दिया है तल्लिकी नफ्सा की सलासन, तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे। अब दूसरी सूरत है तलाक आला इवस को खावन जिक्र कर रहा है और यूं कहता है अंति तालिकुन आला अल्फिन, तुझे तलाक है एक हजार की शर्त पर जी। तो देखो ये तलाक आला इवस है भाई, और औरत यहां कबूल करेगी तो तलाक हो जाएगी और उस पर एक हजार लाजिम हो जाएगा। तो कहते हैं वलौ काला अंति तालिकुन अला अल्फिन, और अगर खावन ने बीवी से कहा कि तुझे एक हजार की शर्त पर तलाक है, फकबिलत, तो औरत ने कबूल कर लिया, तुल्लिकत वअलैहल अल्फ, तो इस औरत को तलाक हो जाएगी और उस पर एक हजार लाजिम हो जाएंगे, वह हुआ का कौलिही अंति तालिकुन भी अल्फिन, और ये इसी तरह है जैसे कि खावन ने बीवी से कहा हो अंति तालिकुन भी अल्फिन। तो खावन जब बीवी को तलाक दे रहा है, चाहे बा जिक्र करे चाहे अला जिक्र करे, दोनों सूरतों के अंदर एक ही हुक्म है, औरत कबूल करेगी तो तब तलाक वाके होगी, क्योंकि खावन ने वैसे तलाक जिक्र की है या इवज भी जिक्र किया है, इवज, और इवज औरत पर उसकी मर्जी के बगैर लाजिम नहीं हो सकता, तो औरत कबूल करेगी तो इवज भी लाजिम होगा और तलाक भी वाके हो जाएगी। तो कहते हैं वह हुआ का कौली ही, ये खावन के इसी कौल की तरह है जैसे वो अंति तालिकुन भी अल्फिन कहे, वला बुद्ध मिनल कबूल फिल वजहैन, और जरूरी है कबूल का करना दोनों सूरतों में, चाहे खावन अंति तालिकुन अला अल्फिन कहे चाहे अंति तालिकुन भी अल्फिन कहे, दोनों में कबूल जरूरी है, लिअन्ना माना कौली ही भी अल्फिन, इसलिए क्योंकि खावन के कौल भी अल्फिन का माना यह है, बीई वजी अल्फिन यजीबू ली अलई की। देखो तर्जमा अच्छी तरह समझ लो, तलाक को भी साथ मिलाओ, अंति तालिकुन बीई वजी अल्फिन यजीबू ली अलई की, कि तुझे तलाक है ऐसे हजार के इवज में, यजीबू ली अलई की, जो मेरे लिए तुम पर वाजिब होंगे, जो मेरे लिए तुम पर वाजिब होंगे। औरत जब कबूल कर रही है तो उसने खुद अपने ऊपर माल को लाजिम कर लिया। व माना कौली ही अला अल्फिन, और खावन के कौल अला अल्फिन का माना यह है, अला शर्ती अल्फिन यकून ली अलई की, कि तुझे तलाक है अला शर्ती अल्फिन ऐसे हजार की शर्त पर, यकून ली अलई की, जो मेरे तुम पर लाजिम होंगे। वल इवज़ु ला यजिबु बिदूनी कबूली ही, और इवज़ तो वाजिब नहीं हो सकता, उस इवज के कबूल के बगैर, वल मुअल्लक बिशर्त ला यनज़िलु क़ब्ला वुजूदिही, और वो चीज जो मुअल्लक हो शर्त के साथ वो नहीं नाजिल होती, क़ब्ला वुजूदिही शर्त के पाए जाने से पहले। भाई इधर देखिए, यहां पर खावन ने कहा अंति तालिकुन बे अल्फिन, तो ये बाइवस के लिए, और अंति तालिकुन अला अल्फिन, तो ये अला किस लिए है, शर्त के लिए है, और इवज भी बगैर कबूल किए किसी पर नहीं आता, तो औरत का कबूल करना जरूरी। और शर्त जब खावन ने अला जिक्र किया कि तुझे तलाक है अला अल्फिन, 1000 की शर्त पर, यानी 1000 तुझ पर लाजिम हो, तो ये जजा कब आएगी, जब औरत कबूल करेगी, क्या करेगी, जब औरत कबूल करेगी। खावन ने शर्त क्या जिक्र की है, औरत के जिम्मे 1000 का लाजिम होना, और इसको औरत कबूल करेगी तो शर्त पूरी हो गई, शर्त पूरी हो गई तो तलाक भी वाकई हो जाएगी। शर्त क्या जिक्र की थी, तुझे तलाक है अला अल्फिन, 1000 की शर्त पर जो मेरे लिए तेरे ऊपर लाजिम होंगे। औरत ने क्या कहा, मुझे कबूल है, तो 1000 क्या हो गए, लाजिम, तो शर्त पाई गई, जब शर्त पाई गई तो मशरूत भी पाया जाएगा, तलाक वाक़े हो जाएगी। ये माना है वल इवज़ु ला यजिबु बिदूनि कबूलिही, और इवज़ वाजिब नहीं होता बगैर उसके कबूल किए, वल मुअल्लक़ु बिशर्ति ला यनज़िलु क़ब्ला वुजूदिही, और वो जो मुअल्लक़ होता है शर्त के साथ, ला यनज़िलु, वो नाजिल नहीं होता, यानी वो आता नहीं है, यानी वो जज़ा वाक़े नहीं होती, क़ब्ला वुजूदिही शर्त के पाए जाने से पहले, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, वह तलाक बाइन, और यह तलाक जो वाकई हुई ये बाइन होगी, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कह दिया कि औरत इवज दे रही है, और इवज के अंदर कौन सी तलाक आती है, तलाक बाइन आती है। वलौ काला लिमरअती ही, और अगर खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुं व अलैकी अल्फुन फकबिलत, औ काला लिअब्दी ही अंत हुर्रुं व अलैका अल्फुन फकबिला, अतकल अब्दु व तुल्लिकतिल मरअतु वला शैअ अलैहिमा इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुं व अलैकी अल्फुन, दो जुमले अलग अलग जिक्र किया और दरमियान में हर्फ अतफ वाव को जिक्र किया, अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, व अलैकी अल्फुन, और तेरे ऊपर 1000 दिरहम हैं, 1000 दिरहम लाजिम हैं। या गुलाम से कहता है अंत हुर्रुन, तू आजाद है, व अलैका अल्फुन, और तेरे ऊपर 1000 दिरहम लाजिम हैं। तो याद रखो, साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो व अलई की अल्फुन या व अलई का अल्फुन आगे आ रहा है, ये माकबल से हाल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये माकबल से हाल बन जाएगा, और हाल में शर्त वाला माना होता है, गोया खावन तलाक को मुअल्लक कर रहा है उस औरत के 1000 कबूल करने पर, या गुलाम की आजादी को आका मुअल्लक कर रहा है उसके 1000 के कबूल करने पर। तो लिहाजा जब औरत कबूल कर लेगी तो तलाक भी वाकई हो जाएगी और 1000 भी उसको देना पड़ेगा। इसी तरह अगर गुलाम कबूल कर लेता है तो वो आजाद भी हो जाएगा और अब 1000 दिरहम की उसको अदायगी करना पड़ेगी। तो साहिबैन फरमाते हैं कि खावन ने बीवी से अगर क्या कहा अंति तालिकुं व अलैकी अल्फुन, या गुलाम से कहा अंत हुर्रुन व अलैका अल्फुन, तो इस सूरत में ये कबूल करेंगे तो तलाक या आजादी भी वाकई होगी और 1000 दिरहम भी लाजिम होंगे, और अगर ये कबूल नहीं करेंगे तो तलाक या आजादी भी वाकई नहीं होगी और इन पर माल भी लाजिम नहीं होगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि गुलाम या औरत कबूल करे या ना करे, हर हाल में तलाक और आजादी हो गई, तलाक और आजादी हो गई और उन पर माल भी लाजिम नहीं है। वो फरमाते हैं कि खावन ने दो जुमले कहे हैं अंति तालिकुं व अलैकी अल्फुन या अंत हुर्रुन व अलैका अल्फुन, तो ये दो अलग अलग जुमले हैं। अंति तालिकुन से तलाक हो गई, औरत कबूल करे या ना करे, और अलैकी अल्फुन ये गोया खावन उस पर 1000 लाजिम कर रहा है और किसी दूसरे के लाजिम करने से किसी पर माल लाजिम नहीं होता। हत्ता कि औरत अगर कबूल भी कर लेगी तो वो भी सिर्फ एक वादा कर रही है और वादे की वजह से कोई चीज उस पर शरअन लाजिम नहीं है। भाई इसी तरह अगर गुलाम भी चाहे कबूल करे या ना करे वो अंतहुर्रुन कहते ही आजाद हो गया, और आगे वालई का अल्फुन कहा तो वो आका उस पर हजार लाजिम कर रहा है, और किसी के लाजिम करने से दूसरे पर माल लाजिम नहीं होता। और अगर गुलाम कबूल कर भी ले तो भी कबूल करने से सिर्फ एक वादा गोया गुलाम कर रहा है, और वादे की वजह से कोई चीज किसी पर लाजिम नहीं होती। तो इमाम साहब के नजदीक गुलाम या औरत कबूल करें या ना करें, तलाक और आजादी हर हाल में वाकई हो गई और उन पर कोई चीज भी लाजिम नहीं है। तो कहते हैं वलौ काला लिमरअति ही, और अगर खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकूं वालई की अल्फुन के तुझे तलाक है, वालई की अल्फुन और तुझ पर एक हजार लाजिम है, फकबीला तो औरत ने कबूल कर लिया, औकाला लि अब्दी ही या आका ने अपने गुलाम से कहा अंत हुर्रुं वालई का अल्फुन कि तू आजाद है और तुझ पर एक हजार लाजिम है, फकबीला गुलाम ने कबूल कर लिया, अतकल आब्दू तो गुलाम आजाद हो जाएगा, व तुल्लिकतिल मरअतु और औरत को तलाक हो जाएगी, वला शैअ अलैहिमा इंदा अबी हनीफत रहमतुल्लाह और कोई चीज नहीं होगी इन दोनों पर इमाम साहेब के नजदीक, वह कदा इदा लम यकबला और इसी तरह है हुक्म जब दोनों कबूल न करें, कबूल न करें फिर भी तलाक और आजादी हो जाएगी और इनके जिम्मे कोई चीज नहीं होगी। वह काला और साहिबैन फरमाते हैं अला कुल्ली वाहिदिन मिन्हुम अल अल्फ इदा कबीला कि इन दोनों में से हर एक पर एक हजार लाजिम है इदा कबीला जब वो कबूल कर ले, वह इदा लम यकबल्ला यकाउ तलाक वल अताक और जब वो कबूल न करे तो फिर न तलाक वाक होगी न अताक वाक होगा। अताक आइन के फतहा के साथ है भाई, आजादी को कहते हैं। लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्न हाद अल कलाम युस्तामलुलिल मुआवजती कि इस तरह का कलाम जो है वो मुआवजे में इस्तेमाल किया जाता है, फइन न कौलहुम इसलिए क्योंकि अरबों का ये जो कौल है इहमिल हाद अल मता वलका दिरहमुन, इहमिल हाद अल मता वलका दिरहमुन तू ये सामान उठा ले, वलका दिरहमुन इस हाल में कि तेरे लिए एक दिरहम होगा, यूं कह दे कोई शख्स या यूं कहे इहमिल हादल मता बिदिरहमिन, इहमिल हादल मता बिदिरहमिन चाहे बाजिकर करे चाहे अलग जुमले की सूरत में जिक्र करे, दोनों सूरतों के अंदर ये इवज होता है, ये इवज जिक्र होता है। कहते हैं फइन न कौलहुम इसलिए क्योंकि अरबों का ये जो कौल है इहमिल हादल मता वलका दिरहमुन बिमंजिलति कौलिहिम बिदिरहमिन, ये अरबों के कौल बिदिरहमिन के दर्जे में ही है, गोया यूं कहा है इहमिल हादल मता बिदिरहमिन के तू ये सामान उठा ले एक दिरहम के बदले। तो साहिबैन की दलील क्या हुई कि इस तरह का कलाम मुआवजात में इस्तेमाल होता है, और ये जो अगला जुमला जिक्र होता है ये हाल होता है और हाल भी शर्त के दर्जे में है। वह लहू और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्नहु जुमलतुन ताम्मतुन कि यह पूरा जुमला है, ये जो अलई का अल्फुन या अलई की अल्फुन है ये पूरा जुमला है। कहते हैं अन्नहु जुमलतुन ताम्मतुन ये पूरा जुमला है, फला तर्तबितु बिमा कबलहु इल्ला बिदलालतिन तो ये नहीं जुड़ेगा मा कबल से मगर किसी दलील से, कोई दलील पाई जाए फिर ही यह माकबल से जुड़ेगा वैसे ये नहीं जुड़ेगा। इजिल असलुफी हल इस्तिकलालू इसलिए क्योंकि जुमले के अंदर असल जो है इस्तिकलाल है, जुमला में असल क्या है वो मुस्तकिल होता है, उसमें बात पूरी होती है, वो किसी से जुड़ने का मोहताज नहीं, जब आपको जोड़ते हैं तो वहां कोई दलील चाहिए, दलील चाहिए। तो कहते हैं इदिल असलु फीहा इस्तिकलालु इसलिए क्योंकि जुमले के अंदर असल जो है मुस्तकिल होना है, वला दलालता और यहां कोई दलील नहीं है। आप वालई की अल्फुन को अंति तालिकुन से जोड़ना चाहते हैं, यहां कोई दलील नहीं, कोई दलील किस तरह नहीं है। कहते हैं अंति तालिकुन के जरिए तलाक दी जाती है और तलाक में क्या होता है बुज़ा मिल्कियत से निकलता है और बुज़ा जब मिल्कियत से निकले वो मुतकव्विम नहीं होता, जबकि इहमिल हादल मता अवलका दिरहमुन ये इजारा है, ये इजारा है और इजारा और बैत और इवज के बगैर नहीं होते। तो यहां पर एक दलील मौजूद है कि ये मालूम हुआ वलका दिरहमुन को माकबल से रबत दे रही है और वो क्या कि ये इजारा है और इजारे में इवज आता है। तो इस दलील की वजह से रबत आ गया बाद वाले जुमले का पहले जुमले से। लेकिन तलाक वाले मसले के अंदर तो बुजा मिल्क से निकल रहा है और बुजा का मिल्क से निकलना मुतकविम नहीं होता, लिहाजा वहां कोई दलील नहीं है इर्तिबात की। दलील समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन्न तलाक वल अताक यनफक्कान अनिल माली, इसलिए क्योंकि तलाक और आजादी जो है वो जुदा हो जाते हैं अनिल माली माल से, इनके साथ माल का होना जरूरी नहीं। बिखिलाफ अल बै वल इजारती, बखिलाफ बै और इजारा के। लिअन्नहुमा ला यूजदानी दूनहू, इसलिए क्योंकि ये बै और इजारा ला यूजदानी, ये नहीं पाए जाते दूनहू बगैर माल के, इनके अंदर माल का होना जरूरी है। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।